इस जगह को इस प्रकार से कहा है कि नेचुरल या प्राकृतिक जिसे कहते हैं। आप लोगों को प्राकृतिक लग रहा है ये माहौल? आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं जगह? फिर से आना चाहेंगे? शायद सुन लिया होगा उन्होंने, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद वो अक्सर जब भगवान श्री कृष्ण की जो वृंदावन लीला है जब उसके विषय में चर्चा किया करते थे तो प्रभुपाद अक्सर जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है वृंदावन का उसके विषय में बहुत गौर किया करते थे कि हम जब इस प्रकार के स्थान में आते हैं जो कि नेचुरल या प्राकृतिक है, प्रभुपाद कहा करते थे कि ऐसे जगहों पर हमें बाहर से सत्वगुण लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे जगहों पर स्वाभाविक रूप से सत्वगुण पाया जाता है। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम लोग सब संडे के दिन नासिक शहर को छोड़कर यहां पर आए तो धीरे धीरे जो तमोगुण और रजोगुण, सुबह जब उठना हुआ तो तमोगुण के प्रभाव से थोड़ा जल्दी उठना हुआ शायद आप लोगों को, तो तमोगुण के प्रभाव से थोड़ा बाहर निकले और फिर उस शहर के माहौल को छोड़कर जब हम इस ओर निकले तो ये एक सत्वगुण स्वाभाविक रूप से यहां पर प्रचलित दिखता है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ऐसे जगहों पर हमारी आध्यात्मिक साधना में ये सत्वगुण बहुत सहायक है, नहीं तो शहर में रहते हुए हमारे घरों में जब हम भक्ति करते हैं तो सत्वगुण को अलग अलग तरीकों से पैदा करना होता है या ऊर्जित करना होता है, जिसे कहते हैं जनरेट करना होता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हम इस प्रकार के जगहों पर आते रहें ताकि हम प्रकृति के निकट रहें जिनके अधिष्ठात्रा देव भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि कहे हैं कि इस प्रकृति का निर्माण उन्होंने किया, परंतु ये जो प्रकृति जो भगवान निर्मित किए हैं उसे हम सत्वगुण से नहीं देख पा रहे। नासिक शहर भी भगवान की प्रकृति है, ऐसा नहीं कि वो प्रकृति भगवान ने नहीं बनाई, वो भी भगवान ने बनाई है, परंतु वो जो शहर की प्रकृति है वो शहर की प्रकृति रजोगुण में, और ये जो प्रकृति है ये सत्वगुण में। और हमें यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें सत्वगुण की प्रकृति भगवान की जो है उसके संपर्क में ज्यादा रहना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे कि यदि हम सब हरे कृष्ण भक्त का उद्देश्य पूछा जाए तो उन्होंने कहा कि हम सबको श्री मायापुर धाम में जाकर इस प्रकार से 24 घंटा श्रवण कीर्तन करना चाहिए बस। परंतु श्रील प्रभुपाद ने कहा क्योंकि हमारे अंदर इतना सत्वगुण नहीं है इसलिए हमें शहर में रहना पड़ता है। इसलिए फिर श्रील प्रभुपाद कहे कि मुझे इतने सारे मंदिर खोल के देना पड़ता है ताकि आप लोग सब शहर में रहते हुए भक्ति कर सको और फिर प्रचार भी उसके साथ साथ होता रहे। तो यहां पर यह समझ में आता है कि श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य वो हमारे रजोगुण को भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस प्रकार से? कि यदि हम यहां पर हम सबको कहा जाए, अभी तो हमने हरि बोल बोल दिया, ये जगह बहुत अच्छी लगी, परंतु यदि ये कहा जाए कि क्या सब घर पे ताला मार के यहां पे रहना चाहोगे तो फिर 10 बार सोचना होगा वो हरि बोल बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उस प्रकार का सत्वगुण नहीं है कि हम नित्य रूप से इस प्रकार के सत्वगुणी प्राकृतिक जगह पर रह सकें। इसलिए हमारे अंदर जो भी जो निचले गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, उनसे बाहर आने के लिए हमें हरे कृष्ण आंदोलन में, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संस्था में हमें प्रचार का कार्य, या ठीक है जहां कहीं पर भी हम हैं, हमारे व्यवसाय में, परिवार के साथ, शहर में, वहां पर हम हमारी भक्ति जारी रखें। परंतु अंततः गोलोक वृंदावन ऐसा ही है, अर्थात इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा। तो ऐसी जगह पर आने के बाद कुछ हमें एक आसार नजर आते हैं कि यदि हम कभी तो भगवत धाम गए तो भगवत धाम किस प्रकार का होगा। हालांकि वहां जनरेटर वगैरह नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि भगवान ने कहा न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, कि वो जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप लोग डर गए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर तो ले जाना पड़ेगा ना। भगवान ने कहा सूर्य भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है जहां पर, अर्थात भगवान के कहने का अर्थ है कि सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है, चंद्र की भी आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता नहीं है, अर्थात जनरेटर की भी आवश्यकता नहीं। जनरेटर वहां पर क्या जनरेट होता है? भक्ति केवल। मम भक्ति ऊर्जित, भगवान कहते हैं वो आध्यात्मिक संसार है जहां पर केवल भक्ति जनरेट होती है, बस और कुछ नहीं। तो आज हमने सोचा कि हम एक ऐसा टॉपिक लेते हैं, काम करना चाहिए पहले, देखते हैं। आप घबराइएगा मत, ये हालांकि अंग्रेजी में आएगा लिखा हुआ, परंतु हिंदी में हम उसको अनुवादित कर कर बताते रहेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा हमारा वैष्णव संघ और निकट से हमें लेना होगा आप लोगों को थोड़ा। आगे ठीक है, आप लोग आइए आगे। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। तो आज के दिन की रूपरेखा थोड़ा आपको बता दें, नहीं तो आप सोचेंगे कि इस प्रकार के अगर सेमिनार होते रहेंगे तो पहले ही भयभीत करने वाले टॉपिक हैं। ये आज का जो सेमिनार, ये सेमिनार इस प्रकार से रहेगा कि हम ये नहीं चाहते कि केवल यहीं से वन वे ट्रैफिक हो, दोनों तरफ से टू वे ट्रैफिक चाहिए। तो हम बीच में आप लोगों को कुछ प्रश्न भी पूछते रहेंगे, और हम ये भी आशा रखते हैं कि आप भी यदि बीच में कुछ आपको समझ में ना आए ये टॉपिक से शुरुआत कर, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे ये इसका अर्थ क्या है, तो हम शुरुआत उससे करेंगे कि कैसे अलग अलग दृष्टिकोण से हम पहले इसे समझें, क्योंकि यहां पर हम सब साधना भक्ति में लगे हुए हैं काफी समय से। कई लोग 16 माला कर रहे हैं, कई लोग कुछ कम माला कर रहे हैं, माला तो कर रहे हैं सब लोग, और हम कुछ फिलॉसफी भी सुने हैं, कुछ समय तक सुनते आ रहे हैं, तो हमारे दृष्टिकोण से हम कैसे आज के इस टॉपिक को समझें, इसको भी हम समझना चाहेंगे कि कई लोग कैसे समझेंगे इस टॉपिक को। और शुरुआत करने से पहले आपके मन में केवल ये देखकर क्या आ रहा है, तो सेमिनार हमारा थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और उसके पश्चात जो आप लोगों का मत है उस पर आगे की दिन की रूपरेखा रहेगी। लंच तो है, फीस्ट है, वो पहले बता देते हैं। और यहां बगल में तैरने के लिए एक सुविधा है, डैम जैसा छोटा है। छोटा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें पानी ज्यादा नहीं है अभी, मतलब डैम के अनुसार जितना पानी होना चाहिए उतना पानी नहीं है। तो यदि जो प्रभु जी हैं उनके लिए ये सुविधा है, यदि आप लोगों को लंच के पहले स्विमिंग करना है तो स्विमिंग के लिए वहां पर हम लोग जा सकते हैं, ताकि केवल ये चार दीवारी में हमारा कार्यक्रम न हो इसलिए। नहीं तो ये नहीं लगना चाहिए कि अरे भाई चार दीवारी में बैठना था तो इतनी दूर क्यों आए, पहाड़ों से घिरे हुए लेकिन पहाड़ों के बीच में फिर चार दीवार से घिरे हुए, तो थोड़ा बाहर हाथ पैर फैलाने के लिए ऐसे घूमने के लिए भी जा सकते हैं। या जिनको तैरना है तो क्या है, फीस्ट से पहले थोड़ा एपेटाइट भी बन जाएगा आप लोगों का, तो वो हम सेमिनार के बाद देखेंगे हमारा सबका हाल कैसा है उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। और हमारी जो नाटक कंपनी वो मुझसे पहले तैयार है, यहाँ पे आज एक लघु नाटिका भी होगी, ड्रामा भी होगा, हमारे जो स्टार एक्टर्स हैं पहले बता देता हूं ताकि आप लोग एंटिसिपेशन में रहो, हमारे स्टार एक्टर राहुल भगत प्रभु, भक्त रोहित प्रभु, निखिल प्रभु, प्राण गौरांग प्रभु क्या हीरो का नाम लास्ट में आता है ना हीरोइन मुझे पता नहीं, शायद यही तो ड्रामा भी होगा और मेरे ख्याल से शायद कुछ गेम्स वगैरह भी रखे हैं, तो गेम्स होंगे और कुछ क्विज क्विज होने वाला है। तो मेरे ख्याल से क्विज जो होगा, अपना अपना जो सेमिनार है उस क्विज नहीं, पूरा कैंसिल कर दिया। नहीं, मैं सोच रहा था कि अपना जो सेमिनार हो रहा है इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रख सकते हैं ताकि सब लोग ध्यान से सुने। तो एक गेम्स में कुछ क्विज जैसा भी होगा, तो उसमें आप लोग तैयार रहिएगा। जो सेमिनार अभी होने वाला है उसके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ उदाहरण या कुछ मुद्दे या कुछ कहानियां जो भी वो पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मेरे ख्याल से बहुत लोगों का कुछ जब भी बाकी है, यदि आप लोगों को जब का समय चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी समय निकाल के जब भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है अपना सोलह माला। और हमारे पास कुछ डीवीडीज हैं श्रील प्रभुपाद के, 1971-70 के हाई क्वालिटी डीवीडीज हैं, तो इनके बीच में अगर हमें समय मिले तो वो प्रसाद के समय, प्रसाद लेते समय वो वीडियोस भी हम दिखाएंगे। और इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण हमारा कीर्तन तो होगा ही, भजन इत्यादि। और हमने ये भी सोचा इन केस शाम के समय और समय मिले तो यदि क्वेश्चन आंसर सेशन आप रखना चाहते हैं तो हम प्रश्न उत्तर का एक सेशन रखेंगे छोटा सा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे व्यावहारिक प्रश्न साधना भक्ति को लेते हुए। तो इस प्रकार से आप लोगों का कोई मत, कुछ इसमें आपको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं, उसको हम हमारे मैनेजमेंट कमेटी कंसिडर करेंगे। ये ठीक लग रहा है आपको? कईयों ने कहा जब तक आप फीस्ट देंगे हमको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी रखिए या ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मत करिए। अच्छा, तो फिर ये जो आज सेमिनार का टॉपिक हमने लिया, ये टॉपिक मैंने एक क्रिश्चियन मिशनरी मैगजीन में देखा था। उन्होंने उनका जो कॉन्ग्रीगेशन होता है, क्रिश्चियन जो उनका कॉन्ग्रीगेशन चर्च का, उनके कॉन्ग्रीगेशन के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक सेमिनार, सेमिनार तो मुझे पता नहीं परंतु ये टॉपिक एक सेमिनार का उन्होंने सुझाया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने का, तो हम लोग कैसे इस मुद्दे को, इस टॉपिक को ठीक से समझें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम आज क्या चर्चा करने वाले हैं, ताकि मुझे कुछ आइडिया आ जाए, मैं भयभीत ना रहूं, आई शुड नॉट बी अफ्रेड। आप लोगों को क्या लगता है? भौतिक जग के बारे में कि यहां रहने से भयभीत और यहां से जाने से भयभीत। हाँ, आप बताइए। हाँ, थोड़ा निकट है हम, हालांकि वो भी मुद्दा सही है अपने प्रभु जी का कि भौतिक संसार में भी हम इस दुविधामन स्थिति में रहते हैं कि भौतिक संसार में रहें तो यहां पर इतना दुख इतना डर बना रहता है, और कई बार ये भौतिक संसार को छोड़ने अर्थात इस भौतिक संसार की जितनी आसक्तियां हैं हमारी वो सब छूट जाएंगी तो उसके विषय में थोड़ा भय बना रहता है। परंतु आज हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि क्या मैंने सही निर्णय लिया ये हरे कृष्णा में आने का, या मुझे पहले से ही अपने आप को संभाल लेना चाहिए था, इतने लोग मुझे बोल रहे थे। अफ्रेड टू स्टे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अफ्रेड टू लीव कृष्ण कॉन्शियसनेस नाउ बिकॉज इट इज टू लेट। हमने एक बार उदाहरण इसका दिया था कि हरे कृष्णा में आने का अर्थ है माफिया गैंग में ज्वाइन होना, क्योंकि माफिया गैंग में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है तो वहां पर एक बार ही अंदर एंट्री, बस वहां से एग्जिट नहीं। एग्जिट यदि होता है तो फिर दूसरे तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि एक बार जो माफिया गैंग ज्वाइन कर लिया उसे वो गैंग छोड़ता नहीं, क्योंकि उसे अब बहुत कुछ पता है उनके गैंग के बारे में, और जो भी उनके गैंग के सारे जो कार्य होते हैं उनके बारे में उसको बहुत कुछ पता है, अर्थात ही नोज टू मच। तो हमारी भक्ति में आने के बाद हमारी स्थिति भी कई बार ऐसी हो जाती है कि इच्छा होती है इस भौतिक संसार का भोग करने की, परंतु इतना सुन लिया इस भौतिक संसार के भोग के विषय में और उसके दुष्परिणाम विशेष रूप से इस भौतिक संसार के भोग के दुष्परिणाम के विषय में इतना सुन लिया है कि यदि भोग करने जाए भी, सारी सुविधा भी यदि भगवान दे दें हमें, हमें इंद्रिय भोग करने की या भक्ति छोड़ने की, फिर भी अब बहुत देरी हो गई, वो भोग हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजी में एक टर्म कहा गया है कि कई बार नॉलेज या ज्ञान के वजह से भय उत्पन्न होता है। अर्थात ये नहीं समझना चाहिए कि हर प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर भय उत्पन्न करेगा, क्योंकि दिव्य ज्ञान जो है वो तो भय दूर करने के लिए। असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये जो तमस है इस भौतिक संसार का, अंधकार जो है वो अंधकार दूर होता है दिव्य ज्ञान से, परंतु वो दिव्य ज्ञान यदि दिव्य तरीके से न लिया जाए तो कई बार वही दिव्य ज्ञान हमारे अंदर भय उत्पन्न कर दे। जैसे कि अर्जुन, अर्जुन वो धर्मशास्त्र पर आधारित अपने तर्क दे रहे थे गीता में, परंतु वो धर्मशास्त्र अर्जुन को भय में डाल रहा था, वो धर्मशास्त्र का ज्ञान, क्योंकि वो सही तरीके से उस धर्मशास्त्र के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं देख रहे थे। तो ये जो गीता भागवत का ज्ञान है, हम लोग जो इसको हमारे जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम इसे भी सही तरीके से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित न देखें तो यही भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला हमारे अंदर भय उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि मान लो आप या कोई व्यक्ति प्लेन में बैठा हुआ है, प्लेन से यात्रा कर रहा है, एयरप्लेन से, तो सब आराम की सुविधा होती है एयरप्लेन में, आपको उठने की भी जरूरत नहीं, हालांकि शौचालय के लिए तो उठना पड़ता है, परंतु वहां पर वो एयर होस्टेस और वो स्टीवर्ड और वो सब रहते हैं, आपको कुछ भी चाहिए तो वहीं पर सब बटन होती है, वहीं पर बटन दबाओ, वो आएंगे, वो पूछेंगे मुस्कुराकर कि क्या सेवा करें, केवल वांछाकल्प बोलना बाकी रह जाता, क्या सेवा करें, इतने तत्पर रहते हैं। तो सब कुछ आपके बैठने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए सब सुविधा रहती है, परंतु कल्पना करो कोई व्यक्ति प्लेन में बैठा है और प्लेन में अनाउंसमेंट हो गया कि जितने सारे यात्री बैठे हैं 100-150 उनमें से एक कोई आतंकवादी है, और उसके बाद में फिर जो भी ड्रिंक्स और ब्रेकफास्ट लंच वो सर्विंग किया जा रहा है, तो सब कैसा लगेगा। अभी वो हर एक पैसेंजर आतंकवादी दिखेगा, यदि मान लो कोई पैसेंजर खड़ा हुआ बीच में और उसकी थोड़ी दाढ़ी है, मुछ नहीं, और यहां पे बिल्ला लगा हुआ है 786। एक बार ऐसा हुआ, ये जो WTC क्रैश हुआ था जिस साल, सितंबर के महीने में हुआ, और मैं और राधा गोपीनाथ प्रभु हम लोग बैंगलोर जा रहे थे अक्टूबर के महीने में, उसके अगले महीने। तो हमारी फ्लाइट थी बॉम्बे से बैंगलोर की। अब पूरा एक महीने तक न्यूज में केवल यही सितंबर 11 का जो क्रैश, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराया आतंकवादियों ने, केवल वही सब चर्चा पूरे विश्व में, और सभी इतने डरे हुए, बहुत कम पैसेंजर थे प्लेन में, तो उसके बाद पैसेंजर कम हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो हुआ क्या कि हम लोग बैठे हुए थे और हमारे सामने एक व्यक्ति, अभी सब लोग भयभीत बैठे हुए हैं प्लेन में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पता नहीं ये प्लेन ही कहीं पे ले जाए अक्टूबर 11 या सितंबर 11 के बाद अक्टूबर 11 फेमस नहीं हो जाए। तो सभी भयभीत बैठे हुए थे, तो सामने हमारे एक व्यक्ति बैठा, उसकी वो थोड़ी वो फ्रेंच दाढ़ी होती उस प्रकार की दाढ़ी थी, वो अचानक बीच में खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ वो दाढ़ी पर घुमाया ऐसे, और हम सब, मैं भी कन्फेस करूंगा, डर लग रहा था मुझे, वो खड़ा हुआ इस प्रकार से कि वो दिखने में थोड़ा अजीब सा ही दिख रहा था, और यदि कोई प्लेन में खड़ा हुआ है तो किसी कारण के लिए खड़ा हुआ ना, क्योंकि खड़े होने की आवश्यकता क्या है वहां पर। तो खड़ा हुआ, फिर अंगड़ाई ली उसने और पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के उसने थोड़े कुछ पैसेंजर को देखा और थोड़ा एक दो फरलांग चलकर फिर आकर बैठ गया। उसके बाद वो जो और 45 मिनट की जो फ्लाइट थी उसमें सब लोग केवल उसी को देख रहे, क्यों खड़ा हुआ ये, ना तो टॉयलेट गया, ना कुछ पीने के लिए मांगा इसने, ना खाने के लिए मांगा, खड़ा क्यों हुआ ये। अभी हो सकता है उसे बीच में कुछ अंगड़ाई लेनी हो, थोड़ा शरीर उसमें कस गया होगा अंदर सीट में, इसलिए। अर्थात ये हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि जब ज्ञान मिल जाता है तो वो ज्ञान, जब शुद्ध सत्व या दिव्य ज्ञान नहीं रहता तो कई बार वो ज्ञान भय उत्पन्न करता है। कोई डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है और डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर कैंसर है, उसका ट्यूमर है, तो तब तक उसे अपने शरीर से इतना कुछ भय नहीं, उल्टा अपने शरीर से वो अपने आप को सुरक्षित मान रहा था, परंतु डॉक्टर ने वो उसके मन में ज्ञान दे दे दिया उसके हृदय में कि तुम्हारे शरीर में कैंसर का ट्यूमर है, उसके बाद फिर भयभीत कहां, अब ये नहीं बताया डॉक्टर कहां पर है, कोई भी कहीं का भी ट्यूमर हो सकता है, कोई भी कैंसर। तो भक्ति में हमें ज्ञान भी जब हम अर्जित करते हैं तो उसे सही तरीके से अर्जित करना चाहिए, ताकि ये जो भय है ये भय दूर हो। इसे भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः, कि इस भौतिक संसार में भय उत्पन्न क्यों होता है, जब हम दुविधा मन स्थिति में रहते हैं, अंग्रेजी में उसे कहते हैं ड्यूअलिटी, कि ये करूं या ये न करूं, यहां जाऊं या न जाऊं। इसलिए भक्ति में भी जब हम पूर्ण निष्ठा से भक्ति नहीं करते तब भय उत्पन्न होता है, जब पूर्ण निष्ठा से भक्ति करेंगे तो बिल्कुल भय नहीं। इसलिए कहा जाता है कि एक जो पूर्ण इंद्रिय भोग में लगा हुआ है उसे भय नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्ण निष्ठा से इंद्रिय भोग में लगा है। और जो शुद्ध भक्त है वो भी भयभीत नहीं रहते, क्योंकि वो पूर्ण निष्ठा से भगवान पर आश्रित हैं। परंतु हमारी स्थिति, हम थोड़ा बीच में, इसलिए बीच में होने के वजह से हम, हमारा झुकाव इंद्रिय भोग के तरफ भी रहता है, और ज्ञान से हम ये भी जानते हैं कि भक्ति ही करनी है हमें, क्योंकि हमें भगवत धाम केवल भक्ति ही ले जाएगी, तो हमारा झुकाव फिर वहां पर भी हमें करना पड़ता है, वहां पर भक्ति की तरफ करना पड़ता है, इंद्रिय भोग की तरफ अपने आप झुकाव होता रहता है, इसलिए फिर ये दुविधा मन स्थिति हमारी प्रारंभ होती है। अब इसके संदर्भ में हम कुछ कोट्स देख रहे थे, इसे यहां पर कहा गया है कि भगवान किसी को माफ कर देते हैं जब कोई भयभीत है अंधकार से, परंतु कहा गया है कि जब कोई रोशनी से भयभीत रहता है तब उसका कोई चारा नहीं उस भय से बाहर आने का। When somebody is afraid of light, यहां पर लाइट का अर्थ क्या है, दिव्य ज्ञान। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग वो अपनी बुद्धि से जानते हैं कि ये जो कृष्ण भक्ति है इससे ऊंचा और कोई मनुष्य का उद्देश्य नहीं हो सकता। वो जानते हैं और जानते हुए फिर वो डरते हैं। मुझे याद है मेरे एक निकट के रिश्तेदार, उनको मैंने राधानाथ महाराज का एक लेक्चर दिया सुनने के लिए, तो वो व्यक्ति और राधानाथ महाराज का लेक्चर सुनने के पश्चात वो पूरी सीढ़ी लाकर मेरे सामने पटक दी उसने, तो फिर से मत देना मुझे। मैंने क्या हुई क्या हुआ, तो कहा उसने कि ये जो प्रवचन मैंने सुना इतना कन्विंसिंग है कि मेरा जो इंद्रिय भोग का मैंने पूरा कार्यक्रम बना रखा है मेरे जीवन के लिए, वो सब विफल हो जाएगा यदि मैं और सुन लूंगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक तरीके से वो गुणगान कर रहा था, परंतु उसने कहा कि मैं फिर से कभी ये हरे कृष्ण का कोई लेक्चर नहीं सुनूंगा, क्योंकि जितना मैं ये और सुनूंगा उतना मेरे इंद्रिय भोग में बाधा आएगी, आई विल स्पॉइल माई पार्टी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, उसने कहा। तो ये उदाहरण है दैट पीपल आर इवन अफ्रेड ऑफ लाइट, फॉरगेट अबाउट डार्कनेस। अच्छा, यहां पर कहा गया है दे दैट वर्शिप गॉड मियरली आउट ऑफ फियर शैल वर्शिप डेविल टू इफ ही अपीयर्स। यदि कोई केवल भय के कारण भक्ति कर रहा है कि अरे भक्ति नहीं करूंगा तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये सब कुछ होना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, वो हमारा मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए भक्ति करने का, कि मुझे केवल ये दुखाले संसार से बाहर निकलना है इसलिए मैं भक्ति में लगा हूं। यदि हम रोज अपने आप से पूछें कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम जप क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, केवल कारण यही है कि मैं इस भयावह संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का अर्थ है अन्य अभिलाषिता, और कोई अभिलाषा नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की अभिलाषा, उसे कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। जैसे कि एक चर्च में एक पादरी रहा करता था और वो बहुत लोगों को अपने प्रवचनों से डराता था कि यदि तुम जीसस को सरेंडर नहीं होगे तो तुम्हें नरक, नित्य रूप से नरक में रहना पड़ेगा, कंडेम टू हेल फॉर एवर, इस प्रकार से। तो कुछ दो बच्चे चर्च के सामने मस्ती कर रहे थे, तो ये जाकर उनको धमकाने लगा पादरी और कहा कि तुम जानते हो तुम दोनों भगवान कहां है और तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो दोनों को पकड़ के जोर जोर से धमकाकर पूछने लगा, टेल मी वेर इज गॉड। तो ये इतना कांपने लगे दोनों बच्चे, ये वहां से भागे अपने घर गए और घर में जाके उनका एक लॉफ्ट सा था, लॉफ्ट में जाकर छिप गए। तो इनके माता पिता ढूंढ रहे थे तो पूछे फिर कहां गए कहां गए। फिर शाम के समय जब उनको पता लगा कि यहां पे छुपे हुए हैं तो पूछा कि भाई क्या हुआ यहां पे क्यों छुपे हुए, तो उसमें से एक ने अपने पिताजी को कहा कि कुछ गड़बड़ हो गया वो चर्च में, क्या हो गया, तो शायद भगवान खो गए। बोला अर्थात भगवान खो गए क्या? वो जो फादर वो चर्च का, वो हमको जोर जोर से हिला हिला के पूछ रहा था वेर इज गॉड वेर इज गॉड। हमने कहा हाँ, हमने तो कुछ चोरी नहीं की हुई, हमको क्या पता कहाँ है भगवान। तो ये इसलिए बताया गया है कि कई बार लोग इतने अंधकार में रहते हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भय के कारण, ताकि नरक से बचे। हमारी एक टीचर थी, वो एक बार उसने कहा कि डू यू ऑल प्रे टू गॉड बिफोर यू टेक योर फूड, क्या तुम भगवान से प्रार्थना करते हो। भोजन खाने से पहले, जैसे हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं वैसे। तो एक लड़के ने कहा, टीचर को तो नहीं कहा, उतनी हिम्मत नहीं थी टीचर को कहने की, उसने मुझसे कहा, आई डोंट नीड टू बिकॉज माई मदर इज अ गुड कुक। अर्थात उसके कहने का अर्थ ये था कि कई बार भगवान से प्रार्थना इसलिए करनी पड़ती क्योंकि पता नहीं प्लेट में क्या आएगा और कौन बना रहा है, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि जो कुछ आए प्लेट में आप उसे ठीक से संभाल लेना, खाने लायक बनाना मेरे लिए। तो यदि हम ये पूछें कि हम अपना जो प्रसाद खाते हैं रोज, महाप्रसादे गोविंदे बोलने के कारण क्या है, व्हाई डू वी चैंट दैट प्रेयर महाप्रसादे गोविंदे, ताकि तो गरम प्रसाद थोड़ा ठंडा हो जाए, खाने के लिए उतना टाइम चाहिए ना, तो बीच में वो कारण है, या फिर सब आइटम प्लेट में आ जाए तब तक कुछ टाइम चाहिए, तो थोड़ा चलो महाप्रसादे बोलते हैं। व्हाट इज द रीजन व्हाई डू वी चैंट महाप्रसादे, किसका महाप्रसाद का, खुद का शुद्धिकरण, परंतु प्रसाद तो हमारा शुद्धिकरण करने वाला है। हाँ, भगवान की तरफ कृतज्ञता का भाव, सही अन्नमृत पाओ, कि ये जो अन्नमृत ये हे राधा कृष्ण आप ही के कृपा से मिला है, और स्वयं के विषय में इसमें कहा गया है, जड़े इंद्रिय ताहे काल, ये जो जड़ इंद्रिय है मेरी, ये इस भौतिक संसार में मुझे बांधे हुए हैं, विशेष रूप से तार मध्य जिह्वार अति लोभमय सुदूरमति, विशेष रूप से जो जिह्वा है ये मुझे इस भौतिक संसार में बांधे हुए, तो वो भावना होनी चाहिए। ये उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं कि एक साधारण सी क्रिया है महाप्रसादे बोलना, प्रसाद की प्रार्थना बोलना, इसके पीछे कई बार हमारा एक फॉर्मेलिटी हो जाता है कि अरे जल्दी जल्दी बोलो महाप्रसादे, जितनी जल्दी खत्म करो महाप्रसादे बोलना, मतलब भगवान को दिखा दे कि हाँ हमने आपका वो जो भी है महाप्रसादी प्रार्थना वो बोले बिना खाया नहीं, तो आप कुछ अगेंस्ट में लिख मत देना आध्यात्मिक संसार में, मेरे रिकॉर्ड के अगेंस्ट में कुछ लिख मत देना, मैंने बोल दिया खाने से पे बोल दिया, तो वो क्या हो जाता है, केवल भय द्वारा प्रेरित कोई भक्ति का अंग हो गया। अर्थात जैसे यहां पर कहा गया है कि यदि शैतान भी आ जाए तो उससे भी भयभीत होके उसे भी नमस्कार करके उसको भी दंडवत करके उसका भी महाप्रसादे बोलना शुरू कर देंगे वो जो भी देगा। तो इसलिए हमारी भक्ति क्या भय के कारण हो रही है ये जानना आवश्यक है। अच्छा, यहां पर सुंदर तरीके से बताया गया है, यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ नो मैटर हाउ टॉल योर ग्रैंडफादर वॉज, चाहे हमारे दादा परदादा 6 फुट 7 फुट के हुए होंगे, परंतु जब हमें बड़ा होना है तो हमें खुद से हमारे शरीर को बड़ा करना होगा जो कुछ पौष्टिक आहार खाकर। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि इस्कॉन में हमें जो भक्ति दी गई है वो सर्वोच्च है, चैतन्य महाप्रभु जो सर्वोच्च राधा रानी का भाव लाकर हमें दिए हैं। मैं हाल ही में बर्मा में था, वहां पर एक भक्त से हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया, एक प्रश्न जो मैं भी पूछना चाहूंगा आपको, कि इस्कॉन जो संस्था है, हम लोग जो इस संस्था में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रश्न यदि पूछा जाए, इज योर सक्सेस डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस ऑफ इस्कॉन, हमारी भक्ति में जो सफलता है क्या वो इस्कॉन संस्था की सफलता पर निर्भर है, आप इसका कैसे उत्तर देंगे? आप लोगों को प्रश्न समझ में आया? सबसे पहले आपको ये दो मुद्दे समझ में आते हैं। एक है इस्कॉन संस्था की सफलता, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था शुरू की, इतने मंदिर खोले, इतनी पुस्तक वितरित हो रही है, इतने सारे भक्त कितने देश विदेश में बन रहे हैं, तो वो एक संस्था की सफलता हुई ना। और एक हम नासिक में जो भी जहां पर भी हम अपने घर में जो रह रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, हमारा छोटा सा एक ऑल्टर है और हम परिवार के साथ बैठकर आरती करते हैं, अपना जप करते हैं। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि एक तरफ है इस्कॉन की सफलता और एक तरफ है मेरी व्यक्तिगत सफलता, माय पर्सनल सक्सेस, तो ये दोनों का कोई तालमेल संबंध है? अच्छा, एक एक कर कर हम सुनेंगे। हाँ बोलो। तो दोनों एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है, और कोई मत किसी का। अर्थात इस्कॉन की सफलता हमारी सफलता नहीं, हमारी सफलता इस्कॉन की सफलता है। एक मिनट। तो यहां पर ये एक थोड़ा अलग सा मुद्दा है कि जब हम हमारी भक्ति में सफल रहेंगे तो हमारी सफल भक्ति के वजह से इस्कॉन को सफलता मिलेगी, और इस्कॉन को सफलता मिलेगी उससे हमें और भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। ये भी अच्छा मुद्दा है। तो व्यक्तिगत उसकी प्रगति हो रही है और उसके साथ साथ संस्था की भी हो रही है, प्रचार कर रहा है तो। अच्छा, अर्थात यदि जैसे कि हम लोग सब यहां पर जो साधक हैं, हरे कृष्ण आंदोलन के साधक हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग यदि प्रचार करें व्यक्तिगत रूप से, तो वो जो प्रचार होगा वो प्रचार इस्कॉन को सफलता दिलाएगा। आपका कहने का अर्थ ये है वो इस्कॉन को सफलता दिलाएगा वो प्रचार। अच्छा, तो हमारे द्वारा यदि प्रचार बढ़ रहा है तो हमारी भी भक्ति सफलता की तरफ अग्रसर है। हाँ पपने जब ये, हाँ ये भी एक अच्छा मुद्दा, क्योंकि इसी के ऊपर हम उस उन भक्त से चर्चा कर रहे थे। इस्कॉन सक्सेस इज नॉट माय सक्सेस। इफ इस्कॉन इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, यदि इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में फैल रही है, इसका अर्थात ये नहीं कि मैं भी भगवत धाम जाऊंगा उसी कारण के वजह से। क्यों? क्योंकि मेरी दीक्षा हो गई इस्कॉन में, या मैं लाइफ मेंबर हूं इस्कॉन में, या मैं कार्यक्रम में आता हूं हर हफ्ते इस्कॉन में, तो इस्कॉन मैंने बीटीजी में पढ़ा या जो कुछ जहां भक्तों से मैंने सुना कि इस्कॉन इतना सफल हो रहा है पूरे विश्व में या नासिक में, तो ये मुद्दा जानना जरूरी है। इस्कॉन सक्सेस इज नॉट अवर सक्सेस। हमारे व्यक्तिगत रूप से हमें भक्ति में सफलता प्राप्त करनी है, और हमारी व्यक्तिगत रूप से जो सफलता होगी दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इस्कॉन सक्सेस। क्योंकि इस्कॉन है क्या? इस्कॉन केवल कोई मंदिर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। इस्कॉन का अर्थ है इस्कॉन के भक्त। चैतन्य महाप्रभु का ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको नाम भी दिया है विश्व वैष्णव सभा, जैसे श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृष्ण भावनामृत संग, अर्थात किसकी भावनाएं, हम जो साधक हैं हमारे अंदर यदि कृष्ण के प्रति भावना जागृत होगी तो वो है इस्कॉन। जैसे कि दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत के उदाहरण है नलकुंवर और मणिग्रीव का। नलकुंवर और मणिग्रीव ये उन्होंने अपराध जो किया जिसके वजह से उन्हें श्राप मिला नारद मुनि द्वारा, वो कहां किया उन्होंने अपराध? उन्होंने कोई ऐसे किसी रास्ते की गली में या किसी परमिट रूम में या डिस्को बार में, वहां पर वो पाप नहीं किया उन्होंने। वो पाप किया कहां? कैलाश धाम में। कैलाश धाम में पाप किया, और वो भी कैलाश धाम में मंदाकिनी गंगा के अंदर। हमें लगता है कोई व्यक्ति यदि कोई पाप करता है तो पाप की जगह भी होती है ना, परंतु यहां पर जगह देखी क्या थी? जगह ऐसी दिव्य जगह, ऐसा दिव्य स्थान। देखिए शिव जी, उनका नाम जो है शिव, ये नाम का अर्थ है शुभ, जो सारे अशुभ वस्तुओं को दूर कर दे वो है शिव, ये नाम का अर्थ है। तो सोचिए उनका स्वयं का धाम कैलाश धाम और गंगा। इस भौतिक संसार में हम जो नासिक में गंगा में जाके स्नान करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, कुंभ मेला होता है नासिक में, ये गंगा तो भौम गंगा है यहां की, परंतु जो जहां से गंगा उत्पन्न होती है मंदाकिनी गंगा कैलाश धाम से, उस गंगा में नलकोर और मणिग्रीव क्या कार्य कर रहे थे? ऐसा गर्हित कार्य। इसलिए ये संस्कृत में एक श्लोक है, स्थान प्रधाना न बल प्रधाना। एक हमने कथा ली थी कि जब गरुड़ जी, विष्णु गरुड़ पर बैठकर शिव जी से मिलने आए तो शिव जी के गले में जो सांप था वो गरुड़ जी पे फुफकार रहा था। तो गरुड़ जी ने फिर कहा कि तुम फुफकार रहे मेरे ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम जिस स्थान पर बैठे हो वो स्थान की महत्ता है, वहां से तुम्हें दम मिल रहा है फुफकारने का, शिव जी के गले पे हो इसलिए तुम्हें इतना दम मिल रहा है, मेरे पे फुफकारते हो, थोड़ा बाहर आओ कमरे से, बोलते हैं ना, फिर दिखाता हूं। तो उसी प्रकार से कई बार हमारा भी बल, हम ऐसे जोर जोर से किसी को बोल सकते हैं कि ये चार नियम कोई पालन करेगा तो भगवत धाम जा सकता है, नहीं पालन करेगा तो कुंभी पाक तप्त सूरमी रसातल तलातल, ये प्रकार के सब नाम भी हम कंठस्थ कर लेते हैं पांचवें स्कंद से। तो कई बार हम इस प्रकार से जोर जोर से बोल सकते हैं, क्यों? स्थान प्रधाना न बल प्रधाना, ये हमारा बल नहीं है। जैसे वो सांप फुफकार रहा था क्योंकि शिवजी के गले पे था, वही सांप शिवजी के गले से नीचे उतरा तब वो सांप गरुड़ जी की तरफ फटकेगा भी नहीं आसपास। तो नलकुंवर और मणिग्रीव उन्होंने उस स्थान का दुरुपयोग किया, इसलिए नारद मुनि ने जो उनको श्राप दिया उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उन्होंने उस स्थान का दुरुपयोग किया था। तो उसी प्रकार से यदि हम हमारे स्थान को ढूंढें तो हमारा स्थान क्या है? यह हरे कृष्णा आंदोलन। तो इस हमारे दादा परदादा तो हमें हमारी व्यक्तिगत जो सफलता है उस पर गौर करना है। जैसे कि एक ये उदाहरण से हमें समझ में आएगा।
एक स्कूल का फंक्शन होने जाने वाला, एनुअल फंक्शन, और एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट जो भी आए हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो भी आए हुए हैं, उनको वेलकम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को कहा गया कि आपके टी शर्ट पर वेलकम का जो स्पेलिंग है वो लिखा जाएगा। तो एक बच्चे के टी शर्ट पर लिखा W, एक बच्चे के टी शर्ट पर लिखा ELCOME, इस प्रकार से। और वो बच्चों को पता नहीं है वेलकम का मतलब क्या है, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता। तो उनको टीचर ने क्या कहा कि मैं जब कहूंगी तो W पहले जाओ, ई उसके पीछे, एल सब इस प्रकार से अपने अपने बगल में खड़ा रहना। तो वो गए स्टेज पे, गए, वो छोटा बच्चा W जो लिखा है वो जाके खड़ा हो गया। उसे पता नहीं वो क्यों खड़ा है और उसे पता नहीं वो W का अर्थ क्या है, और उसके बगल में वो ई आकर खड़ा, वो देख रहा है W है ना, हाँ। तो वो ई, मुझे बोला था ई के बगल में खड़ा होता, ई के बगल में वो खड़ा, एल। तो ऐसे ये लोग सब खड़े हो गए, परंतु वो जो चीफ गेस्ट वो इतना प्रसन्न हो गया, वो ताली मार रहा है और सभी ताली मार रहे हैं और ये लोग खड़े देख रहे हैं, ताली क्यों मार रहे हैं, हम तो कुछ किए नहीं, खाली खड़े हैं। तो सभी जो दर्शक इतने प्रसन्न क्यों हैं, क्योंकि इनको जो रोल दिया गया उन्होंने वो रोल ठीक किया। यदि वो ई W के उधर जाकर खड़ा हो जाता या गलत वो लोग खड़े हो जाते, तो हमारा रोल क्या है वैसा ही है। श्रील प्रभुपाद ने कहा और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। जैसे कि कहा ये W के बगल में तुम खड़े हो जाओ, ई के बगल में तुम खड़े हो जाओ, वैसे हमको कहा एज इट इज। भगवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद ने हमें दी और कहा कि जैसे मैंने प्रचार किया वैसे तुम प्रचार करो और देखोगे कि कौन ताली मारेंगे, सारी परंपरा, भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, उनके सारे पार्षद, और हमें समझ में नहीं आएगा कि वो लोग ताली क्यों मार रहे हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि स्थान प्रधाना न बल प्रधाना। तो हमारी व्यक्तिगत सफलता यदि हम देखें, उसी में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं पाश्चात्य देश गया और मैंने ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई शुद्ध भक्ति प्रचार करने की कोशिश की, प्रभुपाद ने कहा यदि एक भी शुद्ध भक्त बन जाता है तो मेरा आना सफल हुआ, एक भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है। तो प्रभुपाद उसमें इस्कॉन की सफलता मान रहे थे। जैसे जब प्रभुपाद को न्यू वृंदावन में उनके लिए एक पैलेस बनाया, अभी भी बहुत सुंदर पैलेस है प्रभुपाद के लिए बनाया, पैलेस ऑफ गोल्ड, सब भक्त बनाया, कोई आर्किटेक्ट को बाहर से नहीं बुलाया गया, सब भक्त जो कभी कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ सीखे नहीं, इतना सुंदर पैलेस उन्होंने प्रभुपाद के लिए बनाया। और फिर एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद क्या ये जो आपके लिए हमने पैलेस बनाया है इसको हम मणियों से सुसज्जित करें, शुड वी एनलाइटन इट विद ज्वेल्स। प्रभुपाद ने कहा नहीं, माय डिवोटीज आर माय ज्वेल्स। और प्रभुपाद ने कहा कि बिकम लाइक अ ज्वेल लाइक डिवोटी, कि ऐसा भक्त बनो कि जो बहुमूल्य हो, अर्थात जिसकी भक्ति बहुमूल्य हो, और ऐसी भक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण जो बहुमूल्य हैं उन्हें आकर्षित करें। तो यह प्रश्न से हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमें इस्कॉन संस्था को सफलता देनी है तो हम एक एक सदस्य सफलता दे सकते हैं अपनी तरफ से, यदि हम अपनी व्यक्तिगत भक्ति में सफल रहें तो। तो यह मुद्दा समझ में आया, इस्कॉन सक्सेस इज नॉट अवर सक्सेस बट अवर सक्सेस कैन बिकम इस्कॉन सक्सेस। इवन इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक यू विल स्टिल गेट रन ओवर इफ यू जस्ट सिट देयर। यदि आप सही जगह पर भी स्थित हो परंतु प्रगति नहीं कर रहे, तो वहां पर भी रोड़े आ सकते हैं, वहां पर भी पतन हो सकता है। इसलिए हर समय भक्ति में अग्रसर रहना चाहिए, प्रगति के पथ पर रहना चाहिए। जैसे हाल ही में कुछ विद्यार्थियों से मैं चर्चा कर रहा था, तो ये मुद्दा बाहर आया कि हमें अपने जीवन में यदि हम केवल अपना दृष्टिकोण सही रखें तो काफी नहीं है क्या, ये सब बाहर से इतना करने की क्या जरूरत है, ये 16 माला जप, सत्संग में आना जाना, यात्रा करना, ये इस प्रकार की पिकनिक, पिकनिक तो ठीक है बोलते हैं, पिकनिक अच्छा है, लेकिन ये चार नियम, वो 16 माला, ये सब चीजें, केवल मन में दृष्टिकोण अच्छा रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके ऊपर प्रश्न चल रहा था। तो मैंने कहा कि ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये तो खैर अच्छी बात है, परंतु ये जानकारी होनी चाहिए कि किसके लिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपको किसी कार्यक्रम के लिए ताज होटल में बुलाया है और आपको पता नहीं कि ताज होटल कहां पर स्थित है, तो आपने मैप लिया ढूंढने के लिए कि ताज होटल कहां पर स्थित है, परंतु हुआ क्या कि वो मैप पूना के ताज होटल का मैप आपको दिया किसी ने, पूना में भी ताज होटल, बंबई में भी ताज होटल, तो किसी ने पूना या बंबई का ताज होटल का मैप दे दिया कैसे पहुंचना है, तो आप नासिक में पूना के ताज होटल का मैप लेके ढूंढ रहे हैं, और कोई व्यक्ति कहेगा भाई सबसे पहले देखो कि, वो बोलेगा यहां पे तो चौक है, इधर तो चौक लिखे, इधर तो चौक नहीं है, यहां पे तो एक ही रास्ता सीधा जा रहा है, और यहां पर स्टेट बैंक होना चाहिए उसके बगल में, तो इधर तो स्टेट बैंक नहीं, यहां पे तो सब्जी मार्केट है। फिर सब लोगों को दिखाओ तो लोग, फिर कोई बोलता है अरे भाई तुमने पूना का मैप ले रखा है, तो कोई कहे तुम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अरे कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे जब मैप ही गलत है तुम्हारे हाथ में। यदि कोई ऐसे डॉक्टर के पास गया है जिसके पास ना सर्टिफिकेट है और केवल बाहर से दिखने में डॉक्टर जैसा दिखता है, वो व्हाइट कोट और वो स्टेथोस्कोप लंबा चौड़ा लटका हुआ है और बातचीत करने में थोड़ा लगता है डॉक्टर जैसा, हैंडराइटिंग से तो लगता ही है, अच्छी हैंडराइटिंग में मतलब डाउट, अच्छी हैंडराइटिंग वाला डॉक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे डॉक्टर कोई है यहाँ पे? तो यदि कोई, उसे अंग्रेजी में क्वैक बोलते हैं, क्वैक, जैसे वो बतक होता ना, क्वैक करता है, दिखने में हंस जैसा लेकिन जैसे मुंह खोलता है तो पता लगता है बतक है, तो उसे, वो जो डॉक्टर होते हैं उनको क्वैक बोलते हैं। तो यदि कोई इस प्रकार के डॉक्टर के पास गया है और कहता है, कोई व्यक्ति बोले अरे भाई ये डॉक्टर है ही नहीं, ये क्वैक है, ये बोगस है, ये ढोंगी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अरे सबसे पहले किसी प्रामाणिक डॉक्टर के पास जाओ और फिर जो तुम्हारा जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जो करोगे उस डॉक्टर के साथ, फिर कुछ काम का। तो उसी प्रकार से हमें सबसे पहले यह देखना है कि मेरा जो दृष्टिकोण सही दिशा में है, सही व्यक्ति के लिए और सही तरीके से मैं अपनी भक्ति में अपना रहा हूं कि नहीं, नहीं तो फिर इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही सरल फॉर्मूला दिया गया है, यदि आप लोगों को 2 मिनट में, वो बोलते ना 1 मिनट मैनेजर, तो वैसे 1 मिनट एस्ट्रोलॉजर आप बनना चाहेंगे? 1 मिनट में यहां पर आज मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजर या क्या बोलते हैं ज्योतिष बना दूंगा, हाँ बनना चाहेंगे आप लोग? यहां वहां जाने की जरूरत नहीं, पैसा भी खर्चा नहीं होगा, बहुत इकोनॉमिकल, फ्री एडवाइस. इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट वॉज योर पास्ट, क्या बताते क्या है वो लोग, बताते क्या है कि तुम यहां यहां पैदा हुए और बचपन से तुम ये सब किए, ये सब तुम्हारे जीवन में हुआ. सबसे पहले पास्ट, अपने भूत के विषय में बताते हैं. तो जैसे ही भूत के विषय में सब कुछ ठीक ठीक बता दिया, कई तो ऐसे होते हैं आप जाने से पहले वो बता, मैं मुझे पता था तुम आने वाला हो इस समय. मैंने पहले ही अपने सेक्रेटरी को बोला था 11 बजे ये व्यक्ति रामचंद आने वाला है. तो बता दे क्या है, या तो भूतकाल के विषय में या फिर भविष्य के विषय में. तो यहां पर कहा गया, इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट वॉज योर पास्ट देन ऑब्जर्व योर प्रेजेंट. अपने वर्तमान स्थिति देख लो, जो वर्तमान स्थिति है उस पर एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि भूत क्या रहा होगा. जैसे कि यदि कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है या बहुत मोटा है पतला है तो अंदाजा लगा लेता है कि कोई कि अच्छा खाते पीते घर का है, जीवन में खाया पिया बहुत है अच्छे से. तो अपनी वर्तमान स्थिति से भूत का अंदाजा, भूतकाल का अंदाजा लगाया जा सकता है. अच्छा अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो तो जो हो गया तो हो गया, वो मुझे नहीं भी कोई बताए तो भी मुझे पता है. इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट विल बी योर फ्यूचर, हाँ ये बहुत आवश्यक है ना जानना. देन स्टिल ऑब्जर्व योर प्रेजेंट, कि वर्तमान की क्या स्थिति है उसी पर निर्भर करेगा मेरा भविष्य भी. ये नहीं, कई बार हम भक्ति में ये सोचकर बैठ जाते हैं कि अरे अभी तो केवल 2 साल हुए ना भक्ति में, और थोड़ा 10-5 साल हो जाए तो देखना फिर अष्टविकार कैसे आते हैं. सात्विक अष्टविकार, राजसिक अष्टविकार भी होते हैं, तामसिक अष्टविकार भी होते हैं. सात्विक अष्टविकार, और कैसे फिर मेरे जप करने में अश्रु आएंगे, वो नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद, ये सब कुछ कुछ 5-10 साल रुक जाओ. एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्ट सम न्यू रिजल्ट देन यू आर अ फूल नंबर 1. कि वही चीज हम बार 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 बार, चंद्रमौली महाराज अपने एक प्रवचन में बोल रहे थे कि यदि हमने हमारी भक्ति इस जन्म में पूरी नहीं की किसी कारण की वजह से, तो हालांकि भगवान ने कहा है नेहा भिक्रम नाशोस्ति, उस श्लोक में कहा है कि हमारी भक्ति अगर 10% की है तो 11वें% से शुरू होगी अगले जन्म में. तो चंद्रमौली महाराज बोल रहे थे कि यह समझना आवश्यक है कि जिस गलती के वजह से हमारी भक्ति रुक गई वो गलती अगले जन्म में भी वैसी शुरू होगी. वो यदि 10% हमारी गलती थी तो वो गलती भी 11% से शुरू होगी. जैसे भक्ति 11% से शुरू होगी, वो गलती भी फिर से हम वैसे ही कर सकते हैं. तो इसलिए कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे मैं देखूं कि मैं अगले 5-7 साल में भक्ति में प्रगति कर पाऊंगा कि नहीं, ये प्रश्न उठता है. या 5-7 साल तो बहुत हो गया, अगले 6-7 महीने में या अगले महीने में कैसे भक्ति में प्रगति मेरी हो पाएगी. तो वो हमें देखना है मेरी वर्तमान की स्थिति क्या है. एवरी मोमेंट काउंट्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट मोमेंट. ये क्षण यदि हम कृष्ण के विषय में सोच रहे हैं तो अगला क्षण कृष्ण के ही विषय में सोचेंगे. यदि ये क्षण हम माया देवी के विषय में सोच रहे हैं तो अगला क्षण कृष्ण के विषय में नहीं सोच पाएंगे. और हमारा जीवन बना किससे है, क्षणों से बना है. तो यहां पर हमें क्या मुद्दा बताया जा रहा है, वी हैव टू बी कृष्ण कॉन्शियस राइट नाउ, नॉट द नेक्स्ट मोमेंट. अगले क्षण के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करनी, कि मैं अगले क्षण कृष्ण भावना भावित रहूंगा, या अगले घंटा, या अगले दिन, अगले हफ्ता, अगले महीना, वो सब छोड़ दीजिए। इसलिए यदि हमें हमारा आध्यात्मिक भविष्य को उज्जवल करना है तो ये क्षण जो हमें मिला हुआ है, नाउ दिस इज द टाइम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, इसी समय तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। आप लोगों को यदि बीच में कुछ प्रश्न हो तो हाथ उठाकर आप पूछ सकते हैं। तो होता क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं द इनडिसाइसिव सिंड्रोम, अर्थात दुविधा मन स्थिति। अब यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि हमारी साधना भक्ति में ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आती हैं जब हम ये दुविधा मन स्थिति में रहते हैं, जैसे यहां पर ये सब कुछ लिखा गया है, एम आई बींग चेकमेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जैसे शतरंज में होता ना चेकमेट, चेकमेट का अर्थ है ना इधर जा सकता हूं ना इधर जा सकता हूं। शतरंज कितने लोग खेले हैं या जानते हैं शतरंज के खिलाड़ी कौन कौन है? तो उसमें आपने सुना होगा चेकमेट सिचुएशन, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, शह। तो उसमें स्थिति ऐसी होती है कि जो भी आपका जो मंत्री या जो भी वो राजा, वो न तो एक कदम इधर जा सकता है, इधर जाए तो घोड़ा मारे, इधर जाए तो हाथी मारे, इधर जाए तो प्यादा मारे, कहीं पर भी वो उसको पूरा वो जाल में फांस लेता है, उसे कहते हैं चेकमेट। तो कई बार हमारी भक्ति में भी स्थिति ऐसी हो जाती है, कह रहे भक्तों के संग में जाऊं तो वो पूछेंगे सोला माला कर रहे हो कि नहीं तुम, और वहां ना जाऊं और भौतिक संघ में जाऊं तो वो पूछे अरे क्या हो गया आजकल हरे कृष्ण में नहीं जाता, संडे को इधर किधर। तो अब दुविधा मन स्थिति ऐसी हो गई कि संडे को यदि पिक्चर में भी जाऊं तो सभी लोग जानते हैं कि मैं हरे कृष्ण का, वहां पर अगर कोई मुझे देख लिया थिएटर में तो बाकी भक्तों को बता देंगे, तो अभी वो चेकमेट सिचुएशन हो जाती। तब फिर याद आते हैं वो पुराने दिन जब मैं भक्ति में नहीं था, जब मैंने ये चेस का गेम शुरू ही नहीं किया था, अरे मैंने क्यों सीखा ये चेस खेलना। तो ये कई बार स्थिति आती है चेकमेटेड या स्टैग्नेटेड, मतलब पानी जब थम जाए, जो थमा हुआ पानी रहता है उसमें फिर सब प्रकार के कीड़े, जंतु, बदबू, ये सब। तो कई बार हमारी भक्ति भी उस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, करनी नहीं चाहिए, परंतु कलयुग में हम प्रयास कर रहे हैं तो वो एक प्रकार का स्टैग्नेशन आ जाता है कि न तो हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे वो ट्रेडमिल होता ना, ट्रेडमिल में भागते रहो पसीना पसीना हो रहा है लेकिन आप एक कदम भी आगे नहीं गए। वो मशीन पे भागते ना लोग जिम्नेजियम में, तो एक ही जगह पर भागते जा रहे हैं। उस प्रकार से कई बार भक्ति की स्थिति हो जाती है। इसलिए जैसे कि बाहर भौतिक संसार में आप देखो तो इंद्रिय भोग का जो कार्यक्रम लोग कर रखे हैं उसमें वो बिल्कुल भी स्टैग्नेशन नहीं आने देते। जो भी उनका इंद्रिय भोग का कार्यक्रम है उसमें हर समय नयापन बनाए रखते हैं। यदि आप टीवी स्विच ऑन करो तो उसमें हर समय कुछ ना कुछ, टूथपेस्ट में अब कुछ और डाला, अब 3 स्ट्रिप का टूथपेस्ट, उसमें फिर मेंथॉल डाला, फिर लाइम डाला, फिर अदरक डाला, फिर गोभी डाली, क्या क्या सब टूथपेस्ट में नया नयापन लाते रहते हैं। मतलब वही दांत घिसने हैं परंतु वो दांत घिसने में भी रोज नयापन होना चाहिए। वो टूथब्रश भी अंदर तक, यहां तक, कहां तक पहुंच सकती है पता नहीं, अब ऐसे टूथब्रश निकालेंगे कि अंदर तक जाए, सारी आंतड़ियां साफ कर उसमें भी सॉफ्ट ब्रिसल, हार्ड ब्रिसल, मीडियम हार्ड, क्या क्या आते हैं। तो हर, आप देखो, हर एक प्रकार का जो इंद्रिय भोग है उसमें नयापन बनाए रखते हैं। नयापन न रहे तो तुरंत वो स्टैग्नेशन, फिर उसमें कीड़े, बीमारी, बदबू, ये सब शुरू हो जाती। जैसे एक गांव में एक दक्षिण भारत का व्यक्ति एक उत्तर भारत के गांव में गया, तो दक्षिण भारत का उसने कभी ये सब चपाती वगैरह कुछ खाए नहीं थे अपने जीवन में। तो वहां पर एक हलवाई की दुकान पर गया तो वहां पर समोसे, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए आज के फीस्ट में भी समोसा है तो ये उदाहरण आपको अच्छी से याद रहेगा आज की पूरी ट्रिप में तो साउथ इंडियन अब वो नॉर्थ के किसी गांव में गया और वहां पर उसने देखा समोसा, पहली बार उसने समोसा देखा लाइफ में। तो दिखने में एकदम, दिखने में ही इतना उसका शेप आकर्षक, त्रिकोण। तो उसने पूछा ये क्या है, बताया समोसा, नाम भी समोसा, क्या नाम है। तो उसने एक ऑर्डर किया, बहुत अच्छा लगा, उसने जीवन में कभी ऐसा कुछ पदार्थ खाया ही नहीं था। तो उसने वो खाया और फिर 7 दिन बाद फिर से गया वो। तो 7 दिन बाद गया तो 7 दिन बाद उसे वापस उसने समोसा ही मांगा। अब जब उसने वो समोसा खाया तो एकदम ऐसा जैसे आलू सड़ जाता है ना, कैसे उसका टेस्ट हो रहता है, तो अंदर से पूरा वो सड़ा हुआ आलू और पूरा वो मुरझाया हुआ समोसा। तो उसने कहा ये क्या ही, वो 7 दिन पहले कितना अच्छा दिया था। तो वेटर बोलता है वही तो है। हमारे निशांत प्रभु आश्रय अब देखिए उसने सही बोला, उसने पूछा वो 7 दिन पहले कितना अच्छा समोसा, उसने बोला वही समोसा है। क्या समझे आप लोग? वही 7 दिन पहले वाला ही समोसा है। तो कई बार हमारा जब भी ऐसा हो जाता है, जब भक्ति में आते हैं तो इतना अच्छा लगता है ऐसा फ्रेश समोसा की जैसे, और उसके बाद में फिर 7 साल बाद जब पूछा जाता है तो कहते वही तो महामंत्र है, लेकिन वो वही तो महामंत्र और वही तो समोसा, ये स्टेटमेंट के दो अर्थ हो सकते हैं। अर्थात वो महामंत्र जो इतना नया मुझे लग रहा था वो अब उतना फ्रेश नहीं, हो सकता है कि वो अब मेरी भक्ति जो है वो उतनी फ्रेश नहीं, सड़ रही है। जैसे वो समोसा 7 दिन बाद कैसा लगेगा, तो जैसे उसमें हर समय नयापन बनाए रखना पड़ता है ना, हर दिन बनाना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति में भी हमें देखते रहना चाहिए कि क्या मैं अपनी भक्ति, नयापन का अर्थ ये नहीं कि चलो दूसरा कुछ महामंत्र चालू करते हैं, थोड़ा चेंज करके जप करने का ट्राई करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे राम राम, थोड़ा नया उसको चेंज करके फिर महामंत्र करेंगे तो शायद जगे रहेंगे। नयापन आने का अर्थ नहीं कि उसमें हमें बदलाव लाना है। जैसे कि समोसा वही रहेगा, उसे वही समोसा चाहिए था, अर्थात वही आलू, बोलते हैं ना अरे उस दिन जो बनाया था ना वैसा ही बनाओ, वही सब चीज डालो। तो वैसे ही वो महामंत्र जो सदियों से आ रहा है वही महामंत्र जप करना है। उसमें ये नहीं कि अब बाहर से वो समोसे से सब कुछ बाहर निकाल के उसमें कुछ नया डालो, अर्थात आलू के बदले केवल काजू डालो, नहीं, उसमें आलू होना चाहिए, काजू खीर में डालो, इसमें नहीं। जैसे कि हमारे वो सोमा प्रभु आए थे नासिक में कुछ वर्ष पहले, प्रभुपाद डिसाइपल, तो वो बता रहे थे, वो जब पहली बार मंदिर गए, अब वो एक अमेरिकन, उनको क्या पता प्रसाद क्या होता है, तो वो जब पहली बार हरे कृष्ण के मंदिर में गए तो उनको प्रसाद के विषय में बताया गया, तो उन्होंने पूछा क्या प्रसाद क्या होता है, तो भक्त ने कहा प्रसाद तीन गुणों के परे, पहले बताओ तीन गुण क्या होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों के परे ये, और समोसा ही उनको दिया हाथ में। बोले पहले तो उनको भी समझ में नहीं आया, देखने में अजीब लग रहा था, कभी अमेरिका में समोसा देखा नहीं उन्होंने, तो उनको जब कहा गया ये तीन गुणों के परे, दिस इज ट्रांसेंडेंटल फूड, ये शब्द सुनने में भी लगता है कि हाँ कुछ है, दमदार है कुछ, ये समोसा ट्रांसेंडेंटल समोसा है। तो उनको जब हाथ में दिया गया तीन गुणों के परे ये ट्रांसेंडेंटल है, तो उन्होंने पूछा ये फिर भी बताओ कि ये होता क्या है, ट्रांसेंडेंटल या तीन गुणों के परे क्या होता, तो बताया गया कि ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, ये भगवान की कृपा, साक्षात भगवान की कृपा आध्यात्मिक। इतना सब कुछ बोलने के बाद जब समोसा हाथ में दिया गया, तो उन्होंने फिर सबसे पहला बहुत सोच समझ के कि मैं क्या खाने जाने वाला हूं, तीन गुणों के परे, ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक, भौतिक, कुछ भी नहीं इसके अंदर। फिर जब खाया, देखे तो आलू है अंदर, वो जाके भक्त को बुलाए, ये दिस पोटैटो, तुमने मुझे बोला कुछ आध्यात्मिक है, तीन गुणों के परे है, ट्रांसेंडेंटल है, ये तो आलू तो मैं बहुत खाया हूं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति हमने इतनी की और इतना सब कुछ बताया गया है कि जप करने से नाम रूप गुण लीला श्रद्धा भाव अनर्थ निवृत्ति ये सब कुछ आएगा, परंतु फिर खोल के देखते हैं तो आलू। फिर बाद में जब अपने मन को हम परखते हैं, तो मन को परखने के बाद फिर समझ में आता है कि अरे भाई वही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, कई बार वो ज्यादा क्वांटिटी में दिख रहे हैं, अब पहले एक दो ग्राम था, अब तो एक एक किलो, पहले एक एक ग्राम था काम क्रोध लोभ मत्सर, अभी एक एक किलो, दस दस किलो, क्विंटल क्विंटल भरा हुआ है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जप के द्वारा, पहले बिना जप के हमें केवल एक ग्राम दिख रहा था काम क्रोध लोभ, अब जप के द्वारा हमें पहले दिखाई दे रहा है कि कितना क्विंटल अंदर है। और जब हम जप करते रहेंगे, साधना भक्ति करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो अब बाहर निकलेगा। तो इसलिए कई बार ये जो दुविधा मन स्थिति होती, जैसे कि अर्जुन की स्थिति, देखिए अर्जुन इसी स्थिति में थे, चेकमेट स्थिति में, कि शंख बज चुके हैं और यहां भगवान श्री कृष्ण मेरे सारथी बने हुए हैं, वो सब प्रतीक्षा में हैं, परंतु मेरे मन में वो डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा कि मेरे लिए हितकारी क्या है, या वो भी नहीं समझ पा रहे। अर्जुन ने ये भी कहा कि वो नहीं समझ पा रहे, ये दुर्योधन को तो कुछ पता नहीं, उसे तो अक्ल ही नहीं कि उसके हित के लिए क्या है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये जो मेरी दुविधा मन स्थिति है, इससे आप मुझे बाहर निकालिए। तो हमें भी हमारी भक्ति में ये देखते रहना चाहिए कि दुविधा मन स्थिति में हमारी भक्ति बहुत कष्टदायक भक्ति होगी। इसलिए कई बार भक्ति में लोग जब ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं भक्ति से ज्यादा, तो वो ज्ञान के वजह से फिर उनकी दुविधा मन स्थिति ज्यादा होती है कि भगवान ने शरद पूर्णिमा के रात को ही रासलीला क्यों की, कार्तिक के महीने में क्यों की, दिसंबर के महीने में क्यों नहीं की, या कार्तिक से पहले क्यों नहीं की, थोड़ी ठंड कम होती थी। तो जब ज्यादा हम हमारा दिमाग लगाना शुरू करते हैं तो उसमें ज्यादा कष्ट होते हैं भगवान को समझने में। तो इससे हमें बाहर आना है, इस दुविधा मन स्थिति से बाहर आना है। अच्छा, कई बार हमारी यह स्थिति होती है भक्ति में, नथिंग टू अचीव, नथिंग टू लूज ऑल्सो। यदि आप यहां पर पढ़ पा रहे हो तो यहां पर लिखा गया, ये दो वृद्ध व्यक्ति ये बेंच पे बैठे हैं किसी पार्क के। तो एक कहता है, माई वाइफ सेड व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, आई सेड नथिंग, शी सेड यू डिड दैट यस्टरडे, आई सेड आई वॉजंट फिनिश्ड। पत्नी ने पूछा कि तुम ये पार्क में जाके करते क्या हो या करोगे क्या, कुछ नहीं, तो कल भी तो वो ही बोले थे, वो पूरा नहीं हुआ कल। तो कई बार हो सकता है कि हमारे सदस्य परिवार के हमसे पूछे कि आप लोग ये हरे कृष्णा मंदिर में जाके करते क्या है, तो हम तो बोल सकते हैं, बाहरी रूप से बोल सकते हैं कि अरे नाचना गाना खाना पीना बैठना सोना सब कुछ होता है एक साथ। परंतु यदि हम अपने मन में झांक कर, हृदय में झांक कर देखें कि प्रगति कितनी हो रही है, तो कई बार उत्तर यही रहेगा, नथिंग। कि हम इतने सालों से जो इतने सत्संग प्रोग्राम अटेंड किए, इतना लेक्चर ये कानों से अंदर घुसाया, इतना जप ये जिह्वा से किया, बाल्टी भर भर के प्रसाद खाया, इतना सब कुछ जो हमने किया, उसमें कुछ मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं वजन को छोड़कर, या मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं पार्क के बेंच में बैठा हूं 80 साल बाद, और फिर जब पूछा जाए नथिंग टू अचीव नथिंग टू लूज, सो दिस इज अ वेरी ड्रेडफुल सिचुएशन। वी शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस सिंड्रोम ऑफ स्टैग्नेशन। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आप लोग सोच रहे होंगे कहां से फोटो लेके आता है तो हमारे हरे कृष्णा के भक्त ही रिसर्च कर 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 ये फोटो देते हैं। अच्छा, तो यहां पर इस फोटो का टाइटल है साधकाज प्रेडिकमेंट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस फोटो को देखकर और इसका जो कैप्शन दिया गया है, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? दूसरा टूथपेस्ट लेना चाहिए कोलगेट के अलावा, प्रॉमिस प्रॉमिस करता है दांत आएंगे। हाँ हाँ, क्या अच्छा, साधना हमको मिली है, हमको ये जो पद्धति मिली है श्रवण कीर्तन की, परंतु समय नहीं है। जैसे कि यहां पर टूथपेस्ट की दुकान है, चारों तरफ टूथपेस्ट है परंतु दांत ही नहीं है। हाँ, ये भी एक अच्छा मुद्दा है। कृष्णा प्रभु अच्छा, ये कृष्णा प्रभु का पॉइंट बहुत वाजिबी है, क्योंकि वो हमारे मंदिर के फाइनेंस कमेटी में उनके अनुसार खर्चा बच रहा है। हाँ हाँ, जीसस क्राइस्ट ने कहा दैट व्हाट प्रॉफिट इज द मैन who conquers the entire world but loses his own soul। कि तुमने सब कुछ जीत लिया पूरे संसार का, परंतु अपनी आत्मा को नहीं जीता या इंद्रियों को नहीं जीता, तो क्या फायदा। हाँ बिकॉज यू नो टू मच. हाँ, इंद्रिय भोग के विषय सामने हैं परंतु हम इंद्रिय भोग नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रभु जी ने इतना बोला है लेक्चर में, और जैसे ही इंद्रिय भोग करने जाते हैं तो बार बार वो लेक्चर सुनाई देता है. लेक्चर के समय इंद्रिय भोग सुनाई देता है और इंद्रिय भोग करने जाते हैं तो लेक्चर सुनाई देता है. वो जैसे वो कहा गया मॉडर्न डे बिजनेसमैन, मॉडर्न डे बिजनेसमैन के बारे में कहा गया है, ही डिस्कसेस अबाउट गोल्फ इन ऑन हिज बिजनेस टेबल एंड ही डिस्कसेस ऑल बिजनेस व्हेन ही इज प्लेइंग गोल्फ. तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है. और कोई पॉइंट किसी का? हाँ भास्कर प्रभु. साधना है परंतु भक्ति नहीं है, साधन है. अच्छा अच्छा यदि यदि हमारे अंदर भास्कर प्रभु जैसी भक्ति नहीं है तो कितना भी हम माला घुमाएं, वो इस प्रकार से है जैसे दांत ही नहीं है, चाहे कितने भी टूथपेस्ट आप अगल बगल रखें. हाँ हाँ भगवान हमें कृपा दे रहे हैं कोलगेट टूथपेस्ट के रूप में, परंतु जब हमने ही गलत चीज खा खा कर साले दांत तोड़वा लिए तो भक्ति वेदांत की कृपा से हम वेदांत हो गए. मुझे नहीं पता था कि इसको देखकर इतने सारे मुद्दे आएंगे. आपका पॉइंट गोलोक धाम का रास्ता तो पता है परंतु उस पर चल नहीं रहे. यहां पर ये सारे मुद्दे भी आपके वैलिड है, वाजिबी हैं. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमें जो गोलोक वृंदावन की भक्ति चैतन्य महाप्रभु लाके दिए हैं ना, और उसके साथ साथ सब कुछ बताया हमें, उसका एड्रेस बताया, गोलोक वृंदावन कैसे पहुंचना है, सब कुछ पूरा मैप लाके दिया, टिकट भी लाके दी. तो हमारी स्थिति कई बार ऐसी होती है कि जैसे 10-5 मरीज हॉस्पिटल में बीमार है, डिसेंट्री हो रहा है, उल्टी हो रही है, सर दर्द है, बदन दर्द है, सब प्रकार का दर्द है, परंतु वो लोग सब मरीज डिस्कस क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग में कैसे पिकनिक मनाएंगे, समोसा कैसे खाएंगे. वो उल्टी कर रहा है लेकिन चर्चा कर रहा है समोसे की. तो 10 मरीज इकट्ठा हुए हैं, एक बोलता है अरे वो समोसा पता है घी में बना हुआ, एक मिनट में थोड़ा उल्टी करके आता है, उल्टी करके आता है, फिर आने के बाद बटर हलवा, अरे बटर हलवा, फिर समोसा, फिर पुलाव, ये सब. तो क्या ये मेनू बीच बीच में बता रहे हैं, आई ओपनर बोलते हैं इसे. आंख खुली रहती है फिर. तो हमारी स्थिति कैसे होती है, जैसे मान लो कि ये जो महाशय हैं, ऐसे महाशय 10 एकत्रित आए और वो लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, अरे मालूम है आजकल टूथपेस्ट कौन सा सबसे अच्छा है, वो क्लोजअप सबसे अच्छा है, एकदम क्लोजली कर सकते हैं, अप ले जाता है, और कोई बोलता है कोलगेट अच्छा है, कोई ये अच्छा है, प्रॉमिस देता है. तो मान लो कि दांत ही नहीं है लेकिन डिस्कशन चल रहा है ये सब चीजों का. तो कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन सब से हम घिरे हुए, उल्टी दस्त ये सब कुछ लगा हुआ है, परंतु हम एक साथ आकर चर्चा किसकी करते, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला कर गोलोक वृंदावन में, जहां पर हर एक पद पर नृत्य है और जहां पर भगवान की जो बांसुरी है वो बांसुरी की धुन पर ही सब थिरकते हैं, और वहां पर हर एक शब्द गीत में परिणित होकर हम इस सब की चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास फोटो एड्रेस सब किसके, जो एकदम स्वस्थ हैं अपने हेल्थ में, परंतु हमारी स्थिति वैसी है। तो इसमें हमें सीखना क्या चाहिए कि जैसे कि एक मरीज हॉस्पिटल में, हालांकि हॉस्पिटल में वो दुख पा रहा होगा, परंतु वो कभी अपने उल्टी और दस्त से आसक्त नहीं होता, कभी वो हॉस्पिटल के बेड से आसक्त नहीं होता। उसको यदि पूछो कि तुम्हें ये हॉस्पिटल का बेड कैसा लगता है, तो वो कहेगा अरे ये मृत शैया जैसी लगती है। तो कई बार हमें लगता होगा कि ये जो नर्स और डॉक्टर ये एकदम भयानक हो, जो इंजेक्शन लेके आती हैं और भयानक लगते हैं लोग, तो कई बार लगता होगा कि ये जो भक्त आते हैं मुझे बूझते रहते हैं, माला देते हैं, तो वो नर्स डॉक्टर की जैसे इंजेक्शन ले लेके घुसेड़ते रहते हैं मेरे शरीर में, परंतु वो हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो एक साधक का प्रेडिकमेंट है कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो सर्वोच्च अध्यात्म में जो इससे ऊंचा और कुछ नहीं वो दिया लाके, और वो भी किन को लाके दिया, जैसे मानो बटर हलवा समोसा लाके किन को दिया, जो सलाइन भी नहीं ले सकते उनको लाके ये सब दिया फीस्ट। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये उनकी कृपा है, और हमें अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाकर हमें उस स्थिति तक आना है जब इसका हम आस्वादन कर सके। अभी हम हमारे हरे कृष्ण जप का आस्वादन क्यों नहीं कर पा रहे, हालांकि वो है बटर हलवा और ये सब कुछ, परंतु हम इस स्थिति में हैं। जैसे कि ये व्यक्ति को चाहे कितना भी अच्छा टूथपेस्ट ला कर दो, जब तक दांत नहीं आएंगे तब तक वो टूथपेस्ट का कोई फायदा नहीं, वो टूथब्रश का कोई फायदा नहीं। तो यहां पर इस स्लाइड से हम ये सीख रहे हैं कि हमारी योग्यता हमको बढ़ानी है, उस स्तर तक लानी है जो चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जो हमें फिस्ट का प्लेट लाकर दिए हैं, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति जो लाकर दिए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब वो जो छोटी बच्ची है वो जो देख रही है उसका प्रश्न है ये कि किसके चरण कमल पर ध्यान चल रहा है आपका, या फिर हम खुद भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, हूज लोटस फीट एम आई प्रेइंग एट, माय ओन और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, तो तन मंदिर में है, मन चप्पल में है। अच्छा, हाँ, साधना भक्ति में लगा है बाहरी रूप से, हाथ किस तरफ जोड़े हुए है, भगवान की तरफ, भगवान की तरफ हाथ जोड़े हुए, परंतु पैर कहां जोड़े हुए, चप्पल से। हाँ, और कोई विशेष मुद्दे, अटैच टू मटेरियल वर्ल्ड, अटैच टू मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, और क्या सीखते हैं, चप्पल पहन के नहीं आने चाहिए। हाँ, अच्छा, यदि मैं ये प्रश्न पूछूं कि क्या इस व्यक्ति को अपनी चप्पल संभालनी चाहिए, नहीं संभालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहां पे एक सुझाव है, चप्पल स्टैंड रखना चाहिए। इसलिए हम हमारे मंदिर में चप्पल स्टैंड रखते हैं, और आपको बाकायदा बिल्ला दिया जाता है ताकि आप हाथ जोड़ें तो केवल भगवान के सामने उनके लिए हाथ जोड़े। नहीं, लेकिन एक एक सिंबॉलिक स्थिति सामने रख रहा हूं मैं, जैसे कि आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स कहे कि हम जब साधना में लगते हैं तो साधना में लगते हुए साथ साथ ये जो भौतिक इंद्रिय भोग की तरफ, भौतिक जो आसक्ति है उसकी तरफ जो झुकाव है वो नहीं होना चाहिए। अब यहां पर ये प्रश्न कोई पूछ सकता है कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं हर रोज नई चप्पल लेकर आऊं, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि हर रोज मैं नई चप्पल लेकर आऊं, तो मैं यदि अपनी चप्पल भी साथ साथ संभाल रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? आपको अभी समझ में आ रहा है? न आर्थिक स्थिति से न और कोई भौतिक स्थिति से मैं इस लेवल पे हूं कि मैं रोज सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान जितनी भी चप्पलें आप चुरा लो या किसी के द्वारा जो भी कोई चुरा ले कोई गम नहीं, मैं तो आपके शरण में आया हूं। अर्थात हम वो सर्वधर्मान स्थिति में नहीं पहुंचे अब तक, तो उस स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं, और उस स्थिति में यदि हम अपने चप्पलों को संभाल रहे हैं या अपने जो भी आसक्तियां उसको हम बनाए रखे हैं या उसको सुरक्षित रखे हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति कहे तो उसमें गलत क्या है, तो आप क्या कहोगे? वही मेरा प्रश्न कि उसे चप्पल संभालनी चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए या थोड़ी सी चाहिए? सब कुछ छोड़कर। तो एक मत यहां पर यह है, बच्चों को सबको सेमिनार सुनना है क्या कि उनका कुछ ड्रामा वगैरह है, उनका कुछ कार्यक्रम है क्या यहां पे? फोटो देखने आए? बच्चों को लग रहा होगा ये लोग ज्यादा मजाक कर रहे हैं अंदर हमसे ज्यादा। ठीक है, तो हम हमारे पॉइंट पर फिर से आते हैं कि ये पॉइंट यहां पर कहा गया है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए हम भगवान की शरण जब आते हैं। तो कोई दूसरे मत का है इसके अलावा? हाँ, संजय उवाच।
जो मदर है मतलब वो गुरु के समान है, और वो छोटी बच्ची को मंदिर में लेके आए।
अच्छा,
वो भगवान के दर्शन के लिए लेके आ रही, कभी दूसरे तरफ जाते नहीं, वो जो आदमी पैर लगाया
हुआ। अच्छा, तो गलती ये छोटी बच्ची की है। अच्छा, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, देखो ये बहुत इन्होंने अच्छी से गौर कर कर, ये गौर करने वाली बात है, मुद्दा है कि उन्होंने वो देखा वो लड़की को क्या, वो क्या कर रही हा? उसकी चप्पल कहाँ है? हो सकता है उसकी चप्पल चोरी हो गई। तो ये भी एक मुद्दा नोट करने लायक है, परंतु ये प्रश्न हमारा फिर से मैं रखना चाहूंगा कि प्रश्न आपको याद है ना? तो हाँ, थोड़ा जोर से आप बोलेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि चप्पल संभालनी है, यदि हम शुद्ध भक्त की स्थिति में नहीं है, जैसे कि गोपियां अन्य उनकी स्थिति में नहीं है, तो हमें चप्पल संभालनी चाहिए, परंतु तरीका सही से मालूम होना चाहिए, जैसे कि शू स्टॉल। तो शू स्टॉल में हमारी चप्पल सुरक्षित है, इसका सिंबॉलिक अर्थ क्या है? कि हम जो हमारी भौतिक स्थितियां हैं, जैसे हमारा व्यवसाय हो, घर परिवार हो, उसको हम सिक्योर्ड रखें, क्योंकि उसको सिक्योर्ड रखेंगे तब जाकर हमारी प्रार्थना थोड़ी भगवान के चरणों तक, उनके चप्पलों तक पहुंचेगी। तो ये एक थोड़ा बहुत डीप मुद्दा है, हालांकि ये फोटो से हमको लग रहा होगा कि ये केवल कुछ हंसी मजाक की फोटो है, परंतु इसके पीछे ये जो माताजी ने मुद्दा बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझने के लिए हम लोगों के लिए, क्योंकि हम उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं हैं कि हम सबका परित्याग कर सकें अभी इस स्थिति में। हालांकि वो आदर्श होना चाहिए, परंतु अभी हम उस स्थिति में नहीं है, अर्थात तरीका सही होना चाहिए। संभाल के रखना है हमारे भौतिक सुविधाओं को, परंतु उसका तरीका सही होना चाहिए, अर्थात उसका तरीका यह होना चाहिए कि हम कैसे उन भौतिक सुविधाओं को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। तो ये मुद्दा समझ में आ रहा है? और किसी का कोई पॉइंट है बोलने के लिए? अच्छा, अब हम इस मुद्दे पर गौर करेंगे। यहां पर कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की चेतना रखना, उनकी भावना मन में रखना, ये किसके तुल्य है? जैसे कि हम किसी से कोई रिश्ता स्थापित करते हैं। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा सा दृष्टांत रखना चाहूंगा। आपका चश्मा देंगे एक मिनट के? अच्छा, ये चश्मा, अभी यदि मैं निखिल से पूछूं, निखिल थोड़ा खड़ा हो जाओ, ये चश्मे को देखकर तुम्हें क्या लगता है? श्योरली बंद होगा। यदि अब मैं निखिल का चश्मा लेता हूं और फिर मिहिर को पूछता हूं, तो हो सकता है कि मिहिर भी उसी प्रकार से उत्तर दे कि मेरे नंबर का नहीं है। और यदि मैं उस चश्मे को पटक भी दूं, तो हो सकता है कि, हालांकि ये दोनों वैष्णव की भाषा बोल रहे हैं, कि दूसरे का चश्मा खराब हो जाएगा तो पर दुख दुखी। परंतु साधारणतः इतना ज्यादा कुछ अंदर ठेस नहीं पहुंचेगी। परंतु यदि मैं निखिल का चश्मा लेकर उसे फेंकता हूं, या निखिल का चश्मा लेकर घूमता हूं, निखिल अब अपने चश्मे को देखेगा मेरे आंखों के सामने, तो इसे लगेगा मेरा चश्मा है, मेरा चश्मा। इसे यह समझ में आता है कि एक साधारण सी चीज चश्मा, चश्मे की चेतना में हम कैसे जाते हैं जब हम अपना संबंध स्थापित करते हैं। दिस इज हाउ इजी इट इज टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। कि अगर हमारा चश्मा खो गया है या कोई ले लिया है, तो उसकी चेतना में हम इतना क्यों रहते हैं? क्योंकि उससे हम अपना संबंध स्थापित कर दिए हैं। ये मेरे नंबर का है, मेरे आंखों को फिट होता है, मेरा फेवरेट फ्रेम है, और इतना पैसा मैंने दिया, और इतने सालों से ये मेरा साथ दे रहा, इतना संबंध स्थापित हुआ किससे? चश्मे से। तो सोचिए यहां पर श्री वैष्णव एक अलवर है, बैठो, उनका नाम है नाम अलवर। तो नाम अलवर ने यह मुद्दा सामने रखा है कि हम अपनी साधना भक्ति में तब तक प्रगति नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे। एज लॉन्ग एज वी डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद कृष्णा, वी कैन नेवर एडवांस इन अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो हर समय दूसरे का चश्मा ही रहेगा, और वो कब तक हमें उसकी चेतना बनी रहेगी, जब तक कि वो व्यक्ति सामने है, वो चश्मा सामने है, बस। परंतु यदि हम अपना चश्मे के बारे में सोचते हैं तो संबंध स्थापित करने के बाद सोचते हैं, इसलिए वो चश्मा सामने भी नहीं रहे तो हमारी चेतना बनी रहती है। अर्थात यदि हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं तो भगवान के मंदिर में भी न रहें, बाहर कहीं रहें, परंतु संबंध स्थापित हुआ है तो उनकी चेतना में हम रहेंगे। इसलिए एक जो ट्रू रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ये सारे मुद्दे उसमें होने चाहिए। अनकंडीशनल लव, कि बिना किसी हेतु के प्रेम भगवान के प्रति, अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट, कि बिना किसी रुकावट मेरी निष्ठा भगवान में बनी रहे, सेल्फलेस सैक्रिफाइस, कि मैं निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन में या अपने जीवन में कुछ त्याग की भावना ला रहा हूं कि नहीं, इम्प्लिसिट फेथ एंड ट्रस्ट, क्या मुझे इतना दृढ़ विश्वास है भगवान में और इस शुद्ध भक्ति की पद्धति में कि यही हरिनाम मुझे भगवत धाम तक ले जाएगा, और भगवान क्या मुझसे चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द मूड ऑफ कृष्णा, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम मी, अंडरस्टैंडिंग द मूड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। ये जब तक हमारे संबंध में इनमें से एक भी यदि कम रहे तो हमारी जो कृष्ण भावनामृत की जो पद्धति है उसमें कुछ कटौती हो रही, उसमें कुछ कमतरता हो रही, ये जान लेना चाहिए। जैसे कि ये जो मुद्दे हैं, एक शुद्ध रिश्ते को स्थापित करने के जो मुद्दे हैं, प्रहलाद महाराज में देखे जाते हैं। देखो, प्रहलाद महाराज का जो प्रेम भगवान के प्रति अनकंडीशनल था, कोई कंडीशन नहीं रखा। जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि मांगो, कुछ वर मांगो प्रहलाद, मैं देना चाहता हूं, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि नहीं, मैं कोई वणिक नहीं हूं, मैं आपके लिए आपकी प्रेमा भक्ति जागृत किया हूं कुछ मांगने के लिए नहीं। मांगने के लिए तो मैं बहुत कुछ मांग सकता हूं, लेकिन आपसे फिर वो प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी। तो प्रहलाद महाराज ने दिखा दिया अनकंडीशनल लव, अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट, कि इतना कमिटमेंट कि हिरण्यकशिपु, षण्डमर्क, ये सब प्रहलाद महाराज को बार बार धमकी देकर बोल रहे हैं कि तुम विष्णु की भक्ति बंद करो, परंतु फिर भी प्रहलाद महाराज का कमिटमेंट क्या था कि नहीं, मैंने जो नारद मुनि, और नारद मुनि ने ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज को शिक्षा दी थी, नारद मुनि तो उनकी माता को सुना रहे थे, कयाधु को, परंतु प्रहलाद महाराज का कमिटमेंट देखिए। तो उस प्रकार का कमिटमेंट होना चाहिए प्रहलाद महाराज जैसा, सेल्फलेस सैक्रिफाइस। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से कहा कि यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मैं इस भौतिक संसार में रहना चाहता हूं, और ये जितने बद्ध जीव हैं इन बद्ध जीवों का पाप लेना चाहता हूं, और ये आपके भगवत धाम चले जाए, और इसके वजह से यदि मुझे नर्क में भी नित्य रूप से रहना पड़े तो मैं स्वीकार करता हूं उसे। इसको बोलते हैं सेल्फलेस सैक्रिफाइस, कि वो बद्ध जीव जो भगवान के विरुद्ध है, इंद्रिय भोग में लगे हैं, उनका पाप प्रहलाद महाराज अपने सर पर लेना चाहते थे। यहां पर हम अपना पाप ही लेते लेते मर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सारे संसार के जितने पापी जीव हैं उनका पाप मुझे दे दीजिए, उनको आपके धाम में जाने दीजिए, और यदि उनके वजह से मुझे नर्क भी मिले, और कितने समय के लिए, नित्य काल के लिए, इसे कहते हैं सेल्फलेस सैक्रिफाइस। इम्प्लिसिट फेथ एंड ट्रस्ट प्रहलाद महाराज में कैसे देखा गया, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस खंभे में है तुम्हारे भगवान, तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, हाँ, भगवान हैं। प्रहलाद महाराज का उनकी निष्ठा इतनी कि भगवान को उस खंभे में आना पड़ा, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया इसलिए। और प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान का मूड जाना, इसलिए नरसिंह भगवान को कोई भी शांत नहीं कर सका, केवल प्रहलाद महाराज शांत कर सके। इतने नरसिंह भगवान क्रोधित थे कि लक्ष्मी देवी थर थर कांप रही थी। ब्रह्मा जी, शिव जी, ये बड़े बड़े दिग्गज गुण अवतार, ये सब कांप रहे थे, परंतु केवल प्रहलाद महाराज, जिन्होंने अपने स्वामी का मूड जान लिया था। तो जैसे प्रहलाद महाराज गए तो नरसिंह भगवान ने अपना वरद हस्त प्रहलाद महाराज के ऊपर रखा। तो ये एक उदाहरण केवल हमने लिया है एक शुद्ध भक्त का, कि वो शुद्ध भक्त में ये सारे गुण कैसे पाए गए। तो उस प्रकार की भक्ति हमारी होनी चाहिए, इसलिए कहा गया है महाजनो ये न गत सब पंथ। तो ये नाम अलवर जो हैं, जो श्री वैष्णव संप्रदाय के, वो ये एक तुलना दे रहे हैं कि हम साधक जो हैं, हमारा रिश्ता भगवान से किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता होता है, अब लग रहा होगा कि सही में हम तो कुछ और सोच रहे थे, मतलब जो इतना स्ट्रगल चलता है पति पत्नी के जीवन में, वैसा स्ट्रगल होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर हम वो भी उदाहरण लेंगे कि आदर्श पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, क्या होना चाहिए, और उस प्रकार का रिश्ता ये श्री वैष्णव जो आचार्य हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि एक भक्त का भगवान के साथ होना चाहिए। अब इसमें हमने कुछ थोड़े एडिशंस किए हैं हमारे कलयुग बुद्धि को समझने के लिए, कि यदि वो श्री वैष्णव आचार्य ने कहा है कि हमारा भगवान से रिश्ता उस प्रकार से होना चाहिए जैसे पति पत्नी में रिश्ता होता है, तो वैदिक स्क्रिप्चर्स फिर क्या हो गए? शादी.com। और शादी.com आप लोग जानते हैं कि वहां पर अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं कि यदि आपको लंबा कोई चाहिए, छोटा कोई चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, माता पिता के साथ रहने वाला चाहिए, माता पिता के साथ बिल्कुल रहने वाला नहीं चाहिए, जैसे एक व्यक्ति, उसका विवाह नहीं हुआ, 40 साल हो गए, तो उसके मित्र ने पूछा, भाई क्या तुमने 40 साल हो गए विवाह नहीं किया? तो उसने कहा कि मैं पिछले 10 साल से एक परफेक्ट वाइफ ढूंढ रहा था, तो तुमको मिली नहीं, परफेक्ट वाइफ नहीं मिली। हाँ मिली, तो फिर क्यों नहीं किया शादी? तो वो परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ रही थी। तो इस भौतिक संसार में सभी परफेक्ट चीज ढूंढना चाहते हैं कि हमको जो भी कुछ चाहिए परफेक्ट। यदि आलू भी खरीदने जा रहे हैं, परफेक्ट होता है आलू? परफेक्ट ताजा है ना, अभी अभी निकाला है कि नहीं खेत से? तो हर चीज हम परफेक्ट चाहते हैं। तो अभी यदि वैदिक स्क्रिप्चर्स, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनकी तुलना यदि इससे की जाए, तो वैदिक ग्रंथों में आप देखो कि बहुत से ऑफर्स हैं शादी करवाने के। आपको यदि इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा, काली, फिर कलयुग में तो और भी वैरायटीज बढ़ रहे हैं, ये बाबा वो बाबा, किससे शादी करनी है? तो और सबका बताया जाता है इसमें ये गुण है लेकिन ये कमी है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा इतना है लेकिन वो जॉइंट फैमिली में रहता है, रिजेक्ट। अच्छा, इसमें यह समझना है कि हम लोग जो साधक है ना, हम लोग वाइफ है, पत्नी है, और भगवान पति हैं, ये पहले क्लियर कर देते हैं। क्योंकि शास्त्रिक दृष्टिकोण से भी केवल एकला पुरुष कौन है? भगवान। और हम सब प्रकृति हैं। तो अब वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के अलावा बहुत से वर बताए गए हैं हमारे विवाह के लिए, और कई बार हमें लगता है कि ये भी ठीक है, ये देवता की भक्ति भी ठीक है, इनकी भक्ति में देखो ये सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर बताया जाता है कि उसमें ये कमी है। एजुकेशन बहुत है लेकिन रहना अमेरिका में पड़ेगा, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि वो टाइम ना दे, वहां का डॉक्टर है तो 24 घंटे वो कॉल पे रहता है, तो वो उसमें कमतरता है। कोई यदि पैसे वाला है तो दिखने में अच्छा नहीं, कोई दिखने में अच्छा है तो फिर फकीर है, कोई सब कुछ है तो उसकी उम्र 10 साल ज्यादा है मुझसे। यदि ये सब कुछ देखभाल कर लिया, लास्ट में ये इश्यू आ जाता है कि ये अपने मां बाप के साथ क्यों रहता है, शादी मुझे उससे करनी है, उसके मां बाप क्यों बीच में आ रहे हैं, हड्डी बन रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं कि ये परफेक्ट हस्बैंड कौन है। तो वैदिक शास्त्रों में यदि ये शादी.com जो वैदिक शास्त्र में यदि आप जाओ तो परफेक्ट हस्बैंड एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए यहां पर हमें यह निष्कर्ष पर आना है, वैदिक शास्त्रों का निचोड़ यह है कि एक ही व्यक्ति है जिससे हम विवाह कर संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, और वो है भगवान श्री कृष्ण। समुद्र मंथन की लीला में लक्ष्मी देवी, जब वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई तो लक्ष्मी देवी के हाथ में वरमाला, तो लक्ष्मी देवी एक एक देवता को, बड़े बड़े जो दिग्गज वहां पर आए हुए थे, उन सबको देखी और कहा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, उन सब में बहुत से गुण देखे परंतु कुछ ना कुछ कमियां देखी और लक्ष्मी देवी ने रिजेक्ट कर दिया। अंततः जब विष्णु के पास लक्ष्मी देवी पहुंची तो एक दृष्टिकोण से विष्णु में भी एक खोट देख ली उन्होंने। उन्होंने विष्णु को कहा, वो खोट नहीं थी परंतु बाहरी दृष्टिकोण से कहेंगे तो उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ ठीक है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, परंतु ये बहुत ज्यादा ही कृपालु है। तो वो एक दृष्टिकोण से भगवान श्री विष्णु का गुणगान ही कर रही थी, और अंततः वो वरमाला लक्ष्मी देवी ने केवल श्री विष्णु के ही गले में डाली। तो उन्होंने ये हमें अपने उदाहरण से सिखाया कि यदि एक साधक का रिश्ता भगवान से उस प्रकार से स्थापित होना, इसमें आप ये मत समझिए कि हमें अब वो सहजीय की तरह भगवान को अपना पति मानना है। ये श्री वैष्णव जो बता रहे हैं, आप वो सहजीयवाद में मत जाइएगा, यदि आपको पता नहीं तो जानने की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु केवल इतना समझ लीजिए कि वो हमको आगे भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे समझने के लिए बताए हैं उस पर हमें गौर करना है कि कैसे शादी टूटे न, और शादी जो टूटती है वो किसके वजह से टूटती है, वो कारण सब बताए उन्होंने। तलाक जिसे कहते हैं, डिवोर्स, वो किस लिए होता है, वो सब न हो हमारी भक्ति में, किन किन कारणों की वजह से वो होता है और वो न हो, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो यदि वैदिक शास्त्र ग्रंथ उसकी तुलना उससे की गई है तो जो स्पिरिचुअल इनिशिएशन सेरेमनी है उसकी तुलना वो मैरिज सेरेमनी से की गई है। जैसे कि स्पिरिचुअल जो इनिशिएशन होता है, दीक्षा का जो समारोह होता है, उसमें क्या देखेंगे, यज्ञ होता है। एक विवाह में भी यज्ञ होता है और उसमें जो पति पत्नी है वो वाउज लेते हैं ना, व्रत लेते हैं। उसी प्रकार से दीक्षा समारोह में भी एक जो नव दीक्षित है वो वाउज लेता है, वो व्रत लेता है। तो आप देखो ये सब कुछ समान रूप से है, अर्थात जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो फिर उसकी भूमिका क्या रहती है, जो मैरिज प्रीस्ट की भूमिका है। तो मैरिज प्रीस्ट जो है उसे क्या कहते हैं, पुरोहित। वो जो पुरोहित है उसका रोल क्या है कि वो वर और वधु को मिलाए, उनका वो शास्त्र पर आधारित मिलन कराता है। तो वैसे ही गुरु, गुरु का रोल क्या है कि वो एक जो साधक है उसको भगवान से मिलाता है, वो उसका रोल है। तो इसमें यह समझना चाहिए कि गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं किसका कहां मिलन हो रहा है। जैसे एक हमारे भक्त बता रहे थे कि एक वो शादी के समारोह में गए और वो जो पुरोहित वो मंत्र भूल गया, वो विवाह के मंत्र भूल गया, तो अंत्येष्टि मंत्र शुरू कर दिया बोलना। और वैसे भी किसी को कुछ संस्कृत समझ में नहीं आता, तो वो तो सब अब इस धारणा में थे कि ये हमारा विवाह करा रहा है, और वो करा रहा था फिर मंत्रों के अनुसार, तो अंत्येष्टि संस्कार। तो वहां पर बैठे हुए ये भक्त, इनको संस्कृत का जानकारी थी, तो इन्होंने जाके उनके मित्र जिनकी शादी हो रही थी उनको कहा कि ये पता ही कि क्या कर रहा है तुम्हारा। बोले क्या कर रहा है, ये अंत्येष्टि संस्कार के मंत्र बोल रहा है। तो कुछ सालों बाद फिर वो जिनका विवाह हुआ था उन्होंने कहा शायद सही मंत्र बोल रहा था। तो ऐसा कोई पुरोहित नहीं होना चाहिए जो हमारी भक्ति का अंत करा दे। सही मंत्र देकर प्रामाणिक होना चाहिए और प्रामाणिक तरीके से भगवान के साथ हमारा मिलन कराए। अब प्रश्न यह है कि यह रिश्ता तो भगवान से हमारा स्थापित होना है श्री वैष्णव आचार्य के अनुसार, परंतु प्रश्न है कि क्या हम योग्य हैं? यदि हम हमारा बायोडेटा भगवान के सामने रखते हैं और भगवान हमारा बायोडेटा देखते हैं, या हम हमारा पूरा बायोडेटा शादी.com में डालते हैं भगवान को देखने के लिए, और हम सज धज के इस प्रकार से भगवान के सामने जाएं और भगवान को पूछे कृष्णा विल यू मैरी मी, तो यदि हम अब आपसे पूछें कि इस भौतिक संसार में कोई ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहेगा, जो भी ये व्यक्ति या क्या दिख रहा है, प्राणी जंतु जो भी, जैसे कि यदि इस भौतिक संसार में कोई किसी से विवाह करने जाता है तो क्या कुछ नहीं देखता, सब कुछ उसके दादा परदादा, वो कौन सी जाति, जाति में भी कौन सी सब जाति, और उसमें भी सब कुछ उनका बैंक बैलेंस, ब्लड ग्रुप जो भी, सब कुछ चेक करने के बाद फिर कोई विवाह करता है। तो यहां पर भगवान के विषय में तो हमने वैदिक ग्रंथों में देख लिया कि भगवान आध्यात्मिक संसार के गोलोक वृंदावन के षड ऐश्वर्य पूर्ण, अनंत ऐश्वर्य पूर्ण, ये सब कुछ भगवान है, तो वहां तक तो ठीक। परंतु यदि भगवान अब कहे तब मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा बायोडाटा, क्योंकि शादी तो मुझे भी करनी है ना तुमसे, एक तरफ से थोड़ी होगी शादी, तो मुझे भी तो शादी करनी है। तो अब यदि भगवान जानना चाहें हमारा बायोडाटा, तो क्या हम इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या हम योग्य हैं भगवान के एक रिश्तेदार बनने के या पत्नी बनने के। जैसे एक पत्नी ने पति से कहा कुछ वर्षों पश्चात की, अरे अब मुझे समझ में आया है ऐसे मूर्ख से शादी की। वो पति कहता है कि मेरी मूर्खता यदि जाननी थी तो उसी दिन तुमको जान लेनी चाहिए थी जब मैंने चुना तुझे। ये 10 साल बाद अब बोल रहे हैं कि अब पता लगा कि ऐसे मूर्ख से शादी की, तो जब मैंने चुना तभी जान लेना चाहिए था कितना बड़ा मूर्ख था मैं। तो हो सके कई बार भगवान भी ऐसे बोल दे, या हमारा रिश्ता भगवान से उस प्रकार से स्थापित हो रहा है क्या। अब यहां पे ये जो नाम अलवार है, ये श्री वैष्णव अलवार, ये इन सब मुद्दों को रख रहे हैं सामने. डिफरेंट रीजंस व्हाई वाइफ डिवोर्सेस दी हस्बैंड, अर्थात हम भगवान से संबंध अपना तोड़ देते हैं. हालांकि वो जो पहली वाली स्लाइड वो इसलिए दिखाई गई थी, चाहे हम वैसे भी जाएं भगवान के सामने हमारा ऐसा बायोडाटा लेकर, क्या क्वालिफिकेशन है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में पीएचडी लिया, हमारा क्वालिफिकेशन, ये सब हमारा क्वालिफिकेशन है, और बैंक बैलेंस कितना है, करोड़ों जन्मों का पाप, वो हमारा बैलेंस है बैंक बैलेंस. यदि ये सब भी भगवान देखते हैं फिर भी भगवान राजी हैं हमसे विवाह करने के लिए, परंतु स्थिति क्या होती है, हम अपनी तरफ से तलाक भगवान को देना चाहते हैं कई बार. तो ये श्री वैष्णव आचार्य लिए हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से एक साधक भगवान को तलाक देता है. सोचिए कि भगवान को तलाक भी कोई दे सकता है, अर्थात हम पहले तो दिए ही हैं आध्यात्मिक संसार में. हमारा जो ये भगवान के साथ वैवाहिक जीवन चल रहा था उसमें हमने 3 बार कहा तलाक तलाक तलाक, होता है 3 बार बोलने से हो जाता है, तो वो शब्द ध्वनि की वजह से तलाक हो जाता है. तो वो शब्द ध्वनि की वजह से हम इस भौतिक संसार में आए, और यहां पर भी हम ऐसा नहीं कि भगवान को तलाक किए, परंतु भगवान को तलाक देने के बाद फिर और कितनों से विवाह किया, असली पति को छोड़कर फिर और जो कितने अन्य पति लिए इस भौतिक संसार में. तो सबसे पहला कारण वो देते हैं कि पत्नी पति से कहती है, अर्थात ये समझना हम किसी पत्नियों के विरोध में नहीं है, हम सब पत्नियां हैं इस कमरे में आज भगवान के संदर्भ में. तो सबसे पहला कंप्लेंट हमारा क्या होता है कि घर साफ करने में ये मदद नहीं करते. तो कई बार ये प्रश्न उठता है, क्या नौकरानी से शादी की थी क्या, या नौकरानी को घर में लाना था कि केवल मुझे घर का काम धंधा करने के लिए लगा दिया. तो यहां पर वो कहते हैं कि एक साधक का प्रश्न ये उठता है भगवान के प्रति कि भगवान मेरे हृदय को साफ करने का जिम्मा लिया आपने, अर्थात आपके महामंत्र ने, जैसे कि ये साफ सफाई करने का जिम्मा पति का भी होता है पत्नी के अनुसार. तो यहां पर साधक भगवान से ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपने मेरे हृदय को कितना साफ किया, मैं इतना घुमाया हूं ये महामंत्र को पिछले 10 साल में अपनी माला को, परंतु आपने ये मेरा हृदय कितना साफ किया है. जैसे कि एक व्यक्ति साधु महात्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि ये आप जो इतना मंत्र जप करते हैं इसका क्या फायदा, मैंने भी बहुत साल मंत्र जप करने का प्रयास किया और कर देखा, परंतु मेरे हृदय में तो कुछ परिवर्तन मैंने देखा नहीं. तो साधु महात्मा ने कहा, उनके उधर आश्रम में वो किचन के बाहर एक कोयले की टोकरी रखी हुई थी. तो महात्मा कहते हैं कि देखो वो कोयले की टोकरी है, उसमें से वो कोयला खाली कर टोकरी लेकर आओ. तो वो कोयला खाली कर टोकरी लेकर आता है. तो अब वो साधु महात्मा कहते हैं, अब वो सामने नदी है, वो नदी से पानी लेकर आओ. किसमें, टोकरी में. तो कहते हैं ये क्या हुआ, क्या साधु महात्मा को पागल हो गया क्या, टोकरी में पानी लाया जाता है. कहा कि ठीक है ये जादुई होते हैं, पता नहीं कुछ जादू कर देंगे. तो वो गया पानी लाने के लिए, उसने वो नदी में टोकरी डाली. अब टोकरी में तो पानी थोड़ी समाएगा, वो तो बहकर नीचे निकल गया. तो ऐसी खाली टोकरी लेकर साधु महात्मा के पास आया, अरे ये थोड़ी टोकरी में पानी अटता है. तो साधु महात्मा कहते हैं कि ऐसा करो, तुम जल्दी जल्दी भाग कर लेकर आओ, तुम इतना धीरे धीरे चल के आए इसलिए सब पानी बह गया. तो वापस उसको भेजा गया और अब जल्दी लाने के लिए कहा गया. तो वापस गया, वापस जितनी तेजी से हो सके भागकर लेकर आया, परंतु फिर भी ऐसे दो तीन बार वो साधु महात्मा ने जब भेजा, अंत में ये हताश होकर कहा कि भाई या तो मैं पागल हूं या आप पागल, ये जो आप बोल रहे हैं मुझे करने के लिए ये पागलपन है, और मैं भी आपसे बड़ा पागल कि मैं वो कर रहा हूं। तो साधु महात्मा कहते हैं कि तुम कहते हो कि बिल्कुल इसमें मैं पानी नहीं रख पा रहा क्योंकि ये टोकरी है, परंतु तुम देखो झांक कर इस टोकरी में, ये पहली टोकरी कैसी थी और अब कैसी है। तो उसने देखा तो टोकरी अंदर से बिल्कुल साफ हो गई थी, हालांकि जब कोयला उसमें से खाली किया गया तो टोकरी में पूरी कालिक लगी हुई थी, परंतु दो तीन बार पानी एक बूंद भी उसमें नहीं अटा, परंतु दो तीन बार वो नदी से टोकरी निकालने के वजह से अब टोकरी साफ हो गई। तो साधु महात्मा ने कहा कि हमारा हृदय भी उसी प्रकार से, हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण इस हृदय में अपनी रासलीला न करते हों हमारे हृदय में, परंतु धीरे धीरे जितना हम जप करेंगे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण जितना करेंगे उतना ये जो कालिक है हमारे हृदय में, अंधकार जो है वो धीरे 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 साफ होता जाएगा, और तब हमें समझ में आएगा कि हाँ हमने इस हृदय को साफ करने में हो सकता है 1% हमारा हृदय साफ हुआ हो, 100% जो गंदा है उसमें से 1% साफ हुआ हो, परंतु साफ तो हुआ। तो इसमें यह समझना चाहिए कि यह कोई कारण नहीं है भगवान को तलाक देने का, क्योंकि यदि हम देखें तो भगवान सहायता कर रहे हैं, परंतु भगवान सहायता कब करेंगे, जब हम अपना प्रयास या हम शुद्ध तरीके से भगवान को यह साफ करने देंगे, तब भगवान तो तैयार है हमारा हृदय साफ करने के लिए। तो यह सबसे पहला कारण बताया गया। दूसरा कारण पत्नी ये देती है, हाँ नहीं, दैट रीजन इज ऑल्सो कमिंग, डोंट वरी, देर आर सिक्स रीजन्स वाई द वाइफ डिवोर्सेस द हस्बैंड। 6 कारण हैं कि साधक भगवान का परित्याग क्यों करते हैं, तो वो कारण आने वाला है। ये दूसरा कारण श्री वैष्णव आचार्य बताते हैं कि पति के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ना ये एक वैलिड कारण है ना, इसलिए तलाक। तो इसमें साधक भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये शिकायत रखा है कि हे भगवान आप इतने बिजी हो, पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि की रचना की है, पूरी सृष्टि को संभाले हैं और पूरी सृष्टि को मैनेज कर रहे हैं, तो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अनुभव नहीं कर पा रहा, या पत्नी बोल रही नहीं कर पा रही। तो हमें अपनी साधना भक्ति में कई बार क्या लगता है कि क्योंकि मुझे भगवान की अनुभूति नहीं हो रही, मेरी साधना भक्ति में भगवान की अनुभूति नहीं हो रही, इसलिए मुझे लग रहा है कि भगवान मेरे साथ अपने सानिध्य में नहीं है। परंतु भगवान गीता में क्या कहें या उपनिषद में क्या कहें, समाने वृक्षे निमग्ना, जैसे कि दो पंछी वृक्ष की एक डाली पर स्थित हैं, एक पंछी है जीव, दूसरा पंछी भगवान। परंतु इसमें कहा गया है समाने वृक्षे निमग्ना, जो जीव है वो पंछी निमग्न है किसमें, इंद्रिय भोग में, इसलिए वो भगवान को अपने निकट नहीं देख पा रहा। तो यदि पत्नी वो किटी पार्टी में जा रही है और अलग अलग पार्टियों में जा रही है, तो वो कैसे शिकायत कर सकती है कि पति समय नहीं दे रहा। पति तो समय देने के लिए राजी है, परंतु ये जो जीव है वो जीव निमग्न है, अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है कि परमात्मा आत्मा के सबसे निकट है, परंतु फिर भी आत्मा नहीं देख पा रहा परमात्मा को, क्योंकि बीच में उसके अनर्थ की दीवार है। अनर्थ की दीवार के वजह से वो आत्मा नहीं देख पा रहा है कि परमात्मा कितना निकट है मेरे। उदाहरण दिया गया है जैसे एक लालटेन, लालटेन के अंदर रोशनी है, परंतु उस रोशनी को यदि कोई कंट्रोल कर नहीं रखेगा तो पूरा लालटेन काला हो जाता है। तो वैसे ही मन को जब तक हम संयमित नहीं रखेंगे, तब तक परमात्मा जो इतने निकट हैं हमारे, हमारे पति, उनको हम नहीं देख पाएंगे। तो ये दूसरा कारण बताया गया है, ये जो आपका कारण, ही डजंट फुलफिल ऑल ऑफ माई डिजायर्स, कि ठीक है मेरी इच्छा है कि मैं भक्ति के साथ थोड़ा इंद्रिय भोग भी कर लूं, तो उसमें खराबी क्या है? यदि मैं भक्ति करते करते 16 माला तो करना हो ना उनके लिए, यदि एक माला मैं माया का करूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? 16 माला तो हो गया ना आपके लिए। तो आप मेरी थोड़ी सी जो भी इच्छा है, भौतिक इच्छा, मुझे ये चाहिए अपने इंद्रिय भोग के लिए, मेरे आराम के लिए, ठीक है, आपकी भक्ति के आराम के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए जो मैं भक्ति कर रहा हूं उसमें मुझे थोड़ा आप तो आराम दो। तो यहां पर पत्नी का ये प्रश्न है, ये शिकायत है कि ये मेरी जो इच्छाएं हैं उसे पूरे नहीं कर रहे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया यह श्लोक है, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। ये जो इंद्रिय भोग की कामना है ये विषय सुख की कामना है। तो कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण कहे आमा भजे, मेरा भजन कर रहा है ये साधक, परंतु मांगे विषय सुख मांगता है। भगवान कहते हैं अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख, कि अमृत को छोड़कर ये विष मांग रहा है, जहर मांग रहा है, ये बड़ा मूर्ख है। फिर भगवान आगे कहते हैं आमी विज्ञ यही मूर्ख विष केने दिबा, कि मैं तो विज्ञ हूं ये मूर्ख है, ये भौतिक चीजें मांग रहा है मुझसे, परंतु मैं तो इसकी जगह मूर्ख नहीं हूं कि मैं दे दूं इसे। फिर भगवान कहते हैं स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बो, कि मैं अपना स्वयं का चरणामृत दूंगा इसे, इसकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं करूंगा परंतु अपना स्वयं का चरणामृत दूंगा, और उसके पश्चात जो भी इसकी विषय सुख की जो कामना है उससे मुक्त कर दूंगा इसको। तो भगवान यहां पर इस प्रकार से इच्छा पूरी करते हैं, कौन सी? आध्यात्मिक इच्छा पूरी करते हैं। इसके बाद उल्टा पत्नी ये कह रही है कि मेरी भौतिक इच्छा तो पूरी की नहीं, उल्टा दुख दिया। तो कई बार साधक की शिकायत भगवान से क्या रहती है कि मुझे जो थोड़ी सी भौतिक इच्छा थी उसी तो पूरी की नहीं है भगवान ने, मेरे पति ने, परंतु उसके बदले मुझे और दुख दिया। उनकी भक्ति मैं कर रहा हूं और उनकी भक्ति करने में मुझे और दुख ये ही क्यों दे रहे हैं? देखिए ये श्री वैष्णव एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई भक्त तपस्या कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करता है और कुछ भी खाना पीना नहीं, यदि पीना भी है तो पैर से पीना होगा, केवल पीना अलाउड है। एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करना, पैर से पीना, और वो तपस्या के पश्चात फिर उसे काटा जाता है चाकू से, काटा जाता है और तपते हुए जो लोहा है उससे उसके शरीर में छेद किया जाता है। ये उदाहरण ये वैष्णव देते हैं, और तब जाकर वो भगवान के होंठों की बांसुरी बनती है। भगवान के होंठों की जो बांसुरी है, वो बांसुरी को, वो जो बांबू है उसको एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती है। पानी पीना है तो पैरों से पीना पड़ता है, अर्थात उसका जो मूल है वो मूल से उसको पानी पीना पड़ता है बांबू को, और फिर उस बांबू को काटा जाता है, काटने के पश्चात उसमें छिद्र किए जाते हैं। वो छिद्र कैसे? वो तपते हुए लोहे से उसमें छिद्र किए जाते हैं। और वो बांबू जो एक पैर पे खड़ा हुआ, केवल पैरों से पानी पिया हुआ, उसे काटा गया, तपते हुए लोहे से छिद्र किया गया, तब जाकर वो योग्य बनता है भगवान श्री कृष्ण की होंठों पर आने के लिए। तो इसलिए कहा गया, यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किसी को करनी है, यदि भगवान श्री कृष्ण के होंठों तक किसी को आना है, तो उन सब से गुजरना होगा। तैयार है? वो क्या है, वो हम अभी हरि बोल बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक भगवान वो तपस्या शुरू नहीं की हमारे लिए, इसलिए अच्छा लगता है। परंतु इसलिए कहा गया है कि बहुत सुदुर्लभ है भगवान की भक्ति। कुंती महारानी इसीलिए कहती हैं कि मुझे विपदा दो, क्योंकि उसी विपदा में है भगवान, मैं आपकी बांसुरी बन सकती हूं। इसलिए वो और कुछ नहीं चाहती, और कोई पति को तो चाहती नहीं, और इन पति से भी और कोई साधारण वस्तु नहीं चाहती, केवल आपकी शुद्ध भक्ति। जैसे मुझे एक भक्त एक कथा सुना रहे थे कि दो बहनें थी, एक छोटी एक बड़ी, तो वो रोज अपना स्कूल जाया करती थी, स्कूल का बैग लेकर, टिफिन लेकर, वो दोनों चलकर अपना स्कूल जाया करती थी। तो होता क्या था, बारिश के मौसम में, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में कई बार घने बादल के वजह से अंधेरा हो जाता था रास्ते में, थोड़ा ऐसा डरावना लगता था उन्हें चलना। तो जो बड़ी बहन, वो बहुत डरी हुई रहती जब भी बादल घिर जाते, और बादल घिरने के पश्चात जब बिजली कड़कती तो और भी उसे डर लगता, तो वो रोना शुरू करती। और वो जब भी स्कूल जाती और इस प्रकार का माहौल होता, बादल घने गिर जाते या बिजली कड़कती, तो वो रोना शुरू करती और वापस आते समय भी रोते रोते आती। परंतु वो जो छोटी थी, छोटी बहन, जब भी बादल वो बिजली कड़कती थी तो ये हंसती थी। तो ये बड़ी बहन को समझ में नहीं आया। तो एक महीना बीता, एक महीने बाद इसने पूछा कि जब भी बिजली कड़कती है तो तुम हंसती क्यों? तो इसने कहा कि देखो, मुझे बताया था, अपनी माता ने हमको बताया था कि भगवान बादलों के ऊपर रहते हैं। तो भगवान बादलों के ऊपर रहते हैं, और बिजली कड़कने का अर्थ क्या है कि भगवान फोटो खींच रहे हैं ना। तो जब भी कोई फोटो खींचे तो स्माइल प्लीज बोलता है ना, पहले हंसना चाहिए। तो वो बोल रही थी कि जब भी भगवान फोटो खींचते हैं बिजली कड़कने के रूप में, तो मैं स्माइल करती हूं ताकि भगवान जो मेरा फोटो खींचे तो मेरा हंसता हुआ स्माइलिंग फेस आए। अर्थात फिर उसने ये सिखाया अपनी बड़ी बहन को कि इस भौतिक संसार में भी जब भगवान दुख देते हैं ना, तो वो बिजली के समान है। जैसे ही भगवान वो दुख दे रहे हैं तो कड़कती हुई बिजली के समान है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक स्माइल देना चाहिए। क्योंकि हमें, हमारे दृष्टिकोण से क्या समझना चाहिए कि भगवान हमारा फोटो ले रहे हैं अपने पास रखने के लिए। और इसलिए जब भगवान देखेंगे कि अरे ये रोते हुए अपना फोटो दिया है, तो फिर भगवान अपना फोटो अपने भगवान अपने पास नहीं रखेंगे। तो यदि हम अपना फोटो भगवान के पास रखाना चाहते हैं, तो जब बिजली कड़कती है तो हमें किस दृष्टिकोण से उसे देखना चाहिए कि भगवान अपना कैमरा निकाले हैं और भगवान कहते हैं स्माइल प्लीज। तो अर्थात जब भी दुख आए हमारी साधना भक्ति में, तो स्माइल प्लीज, हंसते हुए उस दुख को सहन करना चाहिए। अच्छा, पत्नी का ये एक और, फिर एक और शिकायत पत्नी की ये है कि ये पति हर समय जो भी कुछ पैसा लाकर दे या जो भी कुछ सहायता करे, उसके प्रति हर समय ये चाहता है, ये आकांक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है कि मैं कृतज्ञ बनी रहूं, ये पत्नी सोचती है। अर्थात कई बार हमारे जीवन में भी ये प्रश्न भगवान के प्रति उठता है कि हर समय हमें उस वो नम्रता का मूड, वो कृतज्ञता का मूड बनाए क्यों रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल रहता है कई बार, जो हमारा अहंकार है, ये जो क्रोध है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, इसके वजह से ये नम्रता का भाव, कृतज्ञता का भाव हर समय बनाए नहीं रख सकते। ठीक है, मॉर्निंग प्रोग्राम में बोल दिया ना, तृणादपि सुनिश्चेन, उसके बाद में जैसे ही हम घर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो वहां पर यदि कोई काम नहीं कर रहा तो फिर दो तीन उसे यदि कोई काम नहीं कर रहा है अपनी ऑफिस में तो लगा भी देते हैं, और फिर ध्यान में आता है, अरे आज सुबह ही मैंने गाया था तृणादपि सुनिश्चेन तरोरिव सहिष्णुना। और कई बार फिर किसी के साथ वो क्रोध बाहर आ जाता है, रजोगुण तमोगुण। तो ये भावना हर समय बनाए रखना, हमको लगता है कि भगवान हर समय हमसे ये अपेक्षा रखते हैं, परंतु भगवान हमसे ये अपेक्षा किसके लिए रख रहे हैं? हमारे स्वास्थ्य के लिए। ऐसा नहीं कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ रहे तो भगवान का कुछ लाभ होगा उसमें, यदि हम नम्रता दिखाएं तो भगवान का उसमें कुछ लाभ होगा, नहीं, भगवान का उसमें कोई लाभ नहीं है, लाभ पूरा हमारा है। और इसके संदर्भ में प्रहलाद महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं सातवें स्कंद में, कि जब एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब वो देखता है तो यदि उसे अपने प्रतिबिंब को श्रृंगार देना है तो कैसे प्रतिबिंब को श्रृंगार दे सकेगा? प्रतिमुखस्य, खुद को श्रृंगार देगा तो अपने आप आईने में जो उसका प्रतिबिंब है वो सुसज्जित हो जाएगा उस श्रृंगार से। तो ये उदाहरण प्रहलाद महाराज देते हैं कि जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं, भगवान को सब कुछ अर्पित करते हैं, तो अपने आप हम भी सुसज्जित हो जाते हैं। तो जैसे हम भगवान के प्रतिबिंब हैं तो प्रतिबिंब को यदि सुसज्जित होना है, श्रृंगारित होना है तो भगवान को श्रृंगारित करें। तो ये कारण है कि हमें क्यों भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, और कृतघ्न यदि ये भावना आती है तो फिर वो तलाक वो पत्नी मांगती है। और अंततः ये कारण वो दे रहे हैं तलाक का, कि पत्नी कहती है, अरे मैंने चुनाव किया है ना तुम्हारा, तुम तो थोड़ी आए थे मुझे चयन करते हुए, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है तो मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैं त्यागूं। तो उसी प्रकार से कई बार एक साधक के मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि मैंने इनकी भक्ति चुनी, इतने सारे मंत्र सब लोग दे रहे थे, इतने सारे बाबा गुरु मुझे बुला रहे थे, परंतु मैंने चुना तो मेरा हक बनता है कि मैं जो कुछ चाहूं वो मांगू, और फिर यदि मुझे कुछ ठीक न लगे तो मैं उसे त्याग भी सकता हूं। तो ये सारे जो कारण बताए हैं, हालांकि हमें लग रहा होगा कि ये कारण इतने ज्यादा मेरे जीवन में तो मैं नहीं देख रहा इस समय, या हो सकता है कुछ कारण हम देख रहे हों, परंतु उन्होंने ये कारण देखे हैं। जब भक्ति में कोई धीरे धीरे अग्रसर होता है तो ये सारे जो शिकायतें हैं एक साधक के जीवन में आना शुरू होती हैं। अच्छा, इसके पश्चात हम अब कुछ शिक्षाएं लेंगे रुक्मिणी देवी ने जो भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसे विवाह किया। तो एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श साधक का विवाह पति या कृष्ण के साथ कैसा होना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं रुक्मिणी हरण की कथा से हमें सीखने मिलती है। और इसकी चर्चा हम अभी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आप फिर इस पूरे सेमिनार को तलाक दे दो। तो अब हमारे जो नाटक कंपनी है शायद वो अपने नाटक के साथ तैयार हैं, तो हम जो चर्चा अब तक किए हैं उससे संबंधित आज की ये नाटिका रहेगी। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। हालांकि इनका प्रैक्टिस थोड़ा कम हुआ है, यहां पर पहुंचने के बाद थोड़ा ये कमरे में या बाहर उपमा खाते समय, हाथ धोते समय, उसके पश्चात, तो थोड़ा इनका जैसे हमारा स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस कई बार होता है, इनका स्पॉन्टेनियस ड्रामा की कैटेगरी में आने वाला है। तो यदि कुछ त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कर देना। और मैं अब इनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग आपका परिचय भी दीजिए और एक संक्षिप्त रूप में बताइए कि ये, या मैं बताऊं? और एक बहुत ही